राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना और मस्ताना कहे। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा प्यारी आ पड़े हैं तेरे नाम के सहारे, श्यामा प्यारी आ पड़े हैं तेरे नाम के सहारे। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे बिनु भीषयंतम भट्टस्य पादा सकुटे सयानम पालं मुकुंदम मनसास्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिव्ये पिबस्वामृतमेक देवं गोविंद दामो धर्मा दुबेति, गोविंद दामो धर्माधिवेति। विप्रेत कामा खिल गोपी कन्या मुरारी पादा पित चित्ति प्रति दध्याति कम्मो प्रसाद भोज। गोविंद दामो धर्माधिवेति ग्रहे ग्रहे गो पिबधु कदम्ब सर्वे मिलित्वा समवापु योग। पुण्यानि नामानि प्रत्यन्ति नित्यं गोविंद दामो धर्माधिवेति। गोविंद दामो धर्माधिवेति सुखों सयाना निलयन जेपे नामामि विष्णु प्रभु दंत मृत्या। तेने सितम तन ऐताम्रजंती गोविंद दामो धर्माधुवेती जिहे सदेवं भज सुंदराणी नामामि कृष्ण से मनोहराणी समस्ति भक्तार्ति विनाशनानी गोविंद दामो धर्माधुवेती गोविंद दामो धर्माधुवेती सुख सदाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामो धर्माधुवेति दिव्ये रसिके मधुरा प्रिया तो सत्यं हितं त्वं परमं वदामि आवर्णयेतां भक्तोत्तराणि गोविंद दामो धर्माधुवेति गोविंद दामो धर्माधुवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दन दिधरे कतांते भक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्या गोविंद दामो धर्माधुवेति श्री कृष्ण राधा परगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिबस्वा प्रतुमेत देव गोविंद दामो धर्माधुवेति गोविंद दामो धर्माधुवेति करारविंदे नमदारविंदो मुखारविंदे विनुवेशयन्तम् वटस्ति पत्र सपुटे शयानौ पालौ मुकुन्दम् मनसा स्मराणि
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुःखभाग् भवेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् शानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तम् नित्यम् ध्यायन्ति योगिना कामदम् भोक्षदम् चैव ओङ्काराय नमो नमः ओङ्काराय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वप्रथम सभी लोग सामूहिक शंकल मंत्र का उच्चारण करेंगे। लघु शंकल मंत्र पहले हम बोलेंगे, तत्पश्चात अभी आप सभी सामूहिक रूप से बोलें। कोई भी वाणी इस शंकल मंत्र को बिना बोले नहीं रहे। जिस प्रकार से पत्र में हम समस्त भावों को सन्निहित कर देते हैं, यदि उस पत्र में हम पता नहीं लिखें तो पत्र कहां जाएगा। भाव तो बहुत अच्छे लिखे हैं पर पता नहीं तो पत्र कहां जाएगा, समस्या है। इसी प्रकार से आपने कथा तो सुनी है, कथा का श्रवण तो किया है, लेकिन आपने संकल्प मंत्र नहीं बोला। यथा विधि, ये संकल्प ही हमारी कथा को हमारे अंतरंग हृदय तक पहुंचाता है। जैसे पत्र में पता एड्रेस ठिकाना आवश्यक है, उसी प्रकार से कथा में संकल्प मंत्र भी जरूरी है। इसलिए संकल्प मंत्र सभी लोग बोला करें। कितनी आवश्यकता संकल्प मंत्र की है। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कृत्य, कोई भी धार्मिक उत्सव अनुष्ठान पूजा बिना संकल्प मंत्र के नहीं होती है। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, इसकी प्रामाणिकता आचार्य जी हैं, हमारे सदग्रंथ हैं, सद साहित्य हैं, हमारा वैदिक वाङ्मय है। आइए बस इतना ही कहना है कि सर्वप्रथम सब लोग संकल्प मंत्र बोलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग बोलें ओम तत्सद द्वैतस्य ब्रह्मणो अन्ये द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत्मन्मन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते कीलकनाम संवत्सरे अमुक नामनो हम अपने नाम का उच्चारण करें। अमुक गोत्र उत्पन्नो हम अपने गोत्र का उच्चारण करें। और सभी लोग बोले अद्य मासानाम उत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे षष्ठम्यां तिथौ
मंगलवासरे
महाराष्ट्रप्रान्ते
मुंबईनगर्याम्
श्री प्रेमपुरी आश्रमे
श्रीमद्भागवत्सप्ताह
श्रवणार्थम् प्रथम दिवसे द्वितीय उपस्थितौ विनियोगः अनेन श्रीमद्भागवत्सप्ताह श्रवणेन
माम
धर्मः अर्थः
कामः
मोक्षः
फलानां
प्राप्तिः
अस्तु
एवं च
अभीष्ट
फल सिद्धिः
भगवत्कृपा
अस्तु
श्री कृष्ण
परमात्मा देवता प्रियंताम् इति नन्दनन्दन भगवान श्याम सुंदर के पावन पुनीत पादार विंद में सन्निहित होते हुए पावन कथा को श्रवण करें। परम पूज्य परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन लीलालीन श्रद्धे स्वामी प्रेमप्री जी महाराज के पावन पुनीत पादारविंद में सत्सत वंदन। जगन नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक नंद नंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर तथा आवाहित समस्त देव विग्रहों के पावन चरणों में सत्सत वंदन। हमारे श्री प्रेमपुरी आश्रम के माननीय श्रृंखला तो मुझे मालूम नहीं क्या क्रम है, हमारे आदरणीय शायद झुंझुनवाला जी बैठे क्या, झुंझुनवाला जी हमारे आदरणीय गिरीश भाई जी हमारे स्नेह के पात्र सुमन भाई जी तीसरे हमारे हैं जी नाम भूल गया भूपेंद्र भाई सामने हमारे बैठे हुए हैं, राजेश भाई प्रकाश भाई हमारे आदरणीय आचार्य जी संगीतज्ञ वृंद श्रद्धामयी मंगलमयी मातृशक्ति स्वरूपा हमारी श्रद्धामयी माता हो एवं बंधु हो भगवान की महती अनुकंपा परम पावन अनुकंपा हम पर बरस रही है। निश्चित समझो कि जब परमात्मा कृपा करता है तो वो कृपा करके अपना सामीप्य भी देता है। यदि हमको उस परमात्मा का सामीप्य मिल गया सानिध्य मिल गया तो समझो हम पर कृपा बरस गई भगवान की। मैं समझता हूं कि आप पर पूर्ण कृपा परमात्मा की बरस रही है। इसमें इतकिंचित भी कमी ईश्वर ने अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है। अब हमारे पास उस कृपा को सजोने का बटोरने का लेने का कितना बड़ा पात्र है। हम जितना बड़ा पात्र लेकर के आए हैं जितना पात्र सजा के सुधार के संभाल के लाए हैं उतनी उस कृपा को हम यहां से लेकर के जाएंगे। प्रभु के यहां से उस कृपा में कोई कमी नहीं है। सागर में अथा जल होता है लेकिन व्यक्ति उतना ही पा पाता है जितना वो पात्र लेकर के जाता है। श्रद्धा रूपी पात्र, निष्ठा आस्था रूपी पात्र हमारा कितना बड़ा है, जितना बृहद पात्र होगा उतनी हमको कृपा की उपलब्धि होगी। तो भागवत भगवान की कृपा हो रही है, वेदव्यास भगवान की कृपा हो रही है, हमारे पूज्य स्वामी प्रेमप्री जी महाराज की कृपा हो रही है। तो भगवान अपनी कृपाओं को अनेका अनेक रूपेण माध्यमों से आप पर बरसा रहा है। हम उस कृपा का आनंद लें और उसमें अवगाहन करें, उसमें गोते लगाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये भगवान की कथा है, भाव से सुने, निष्ठापूर्वक सुने। प्रातःकाल की कथा में मैं आपको श्रवण करा रहा था कि महर्षि जी नारद जी व्यास देव के पास जाते हैं और व्यास देव को देख करके वो समझ गए कि इनके अंदर कोई खिन्नता है, कोई न्यूनता है, कोई कमी है। न्यूनता को देख करके महर्षि नारद जी ने कहा कि आप में न्यूनता है कि अब आपने अपनी वाणी से बहुत कुछ बखान किया लेकिन अभी तक ऐसी कोई गाथा, ऐसी कोई कृति आपके द्वारा सृजित नहीं है, नहीं की गई, जो केवल मात्र परमात्मा के गुणानुवाद से गुंफित हो, गुथित हो। बस यही, इसी कारण आप खिन्न हैं। ध्यान देना, ये नारद जी ने व्यासदेव को बताया है। आप भी थोड़ा चिंतन करो, आप भी थोड़ा विचार करो। महर्षि नारद ने कहा कि व्यास आप में क्षमता है, आप में प्रतिभा है, आप में मनीषा इतनी बड़ी प्रज्ञा है कि आप ये कर सकते हैं। यदि व्यक्ति में प्रज्ञा है, मनीषा है, मेधा है और मेधा प्रज्ञा प्रतिभा होने के बाद यदि वो सृजन नहीं करता है, ध्यान देना, पुनरावृत्ति कर रहा हूं, क्षमता होने पर भी यदि कार्य नहीं करता है तो उसे अपराध लगता है। महर्षि नारद ने कहा उसे अपराध लगता है। यदि कोई विद्वान है, शास्त्रों में पारंगत है, ज्ञाता है, यदि वो लेखनी के माध्यम से सृजन नहीं करता है, कुछ समाज को देता नहीं है, कुछ लिखता नहीं है, तो भागवत में आ रहा है कि वह भी अपराध करता है। ध्यान देना, यहां बताया जा रहा है कि कोई धनिक है, धन के पास बहुत धन है और शुभ कार्य में नहीं लगाता है, जरूरत है, आवश्यकता है और वो नहीं लगाता है, नहीं देता है, सदकर्म शुभ कर्म नहीं करता है, तो वो भी अपराधी है। शिव पुराण में वेद व्यास ने लिखा है, उभौ न विनिवेशितव्यौ, धनिनम च प्रदातारम, दातारम च तपस्वनम, उभौ त्वौ न विजानीतौ। शिव पुराण में वेद व्यास ने लिखा है धनिनम च प्रदातारम, यदि धनी है और धन को न प्रदातारम वो नहीं देता है, समाज को, देश को अनुकूल पात्र के पाने पर नहीं देता है, धनिनम च प्रदातारम दातारम च तपस्विनम। यदि कोई तपस्वी है वो भजन नहीं करता है, गरीब आदमी भजन नहीं करता है, धनी आदमी दान नहीं करता है, तो बोले उभौ तौ गले बद्धवा दृढ़ाम श्रीराम, वेदव्यास ने लिखा शिव प्राण में कि गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, उन दोनों के गले में भारी सी शिला बांध करके और प्रवाहित जल में छोड़ देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नाराज नहीं होना, ये मैं नहीं बोला है। उभौ तो उभौ उन दोनों को गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, भारी सी शिला बांधो और खूब तेज जल बह रहा उसमें दोनों को डाल दो। बड़ी करारी बात कही भाई वेदव्यास जी ने। एक बात तुमको अच्छी बताऊं, ये महात्मा ही करारी बात कह सकता है, दुनिया का आदमी नहीं कह सकता है। वो तो कहीं से डरेगा ना, अच्छी लगे खराब लगे बात कहनी है, क्या समझे। शास्त्र जो है शास्त्र वो सही निर्णय करता है। अब कहने वाला वक्ता कितना उसमें हेर फेर कर जाता है वो अलग बात है। नियम है कि शास्त्र में लिखा उसे बांचना चाहिए, उसे कहना चाहिए, उसमें घुमा फेर नहीं करना चाहिए। ऐसा बतलाया गया है, प्रसंग चल रहा है कि यदि वेद व्यास में प्रतिभा है तो वो लेखनी पकड़े सृजन करे, धनी के अंदर धनी के पास धन है तो वो उसके द्वारा। गीता का पहला श्लोक थोड़ा ध्यान दें आप, गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्सवा और मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। पहले की पंक्ति लीजिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यहां पर क्षेत्र शब्द दो बार दिया गया है। दो बार कहा क्षेत्री क्षेत्री, ये दो बार क्यों कहा। हमारे व्याकरण के अनुसार अर्धमात्रा लाघवेन आचार्य जी पुत्रो सम्मन्यते, अर्धमात्रा लाघवेन, यदि अर्धमात्रा का भी लाघव हो रहा हो व्याकरण में, लाभ हो रहा हो तो वैयाकरणी लोग क्या करते हैं, पुत्रोत्सव मनते, जैसे पुत्र होने खुशी मनाते हैं ऐसे खुशी मनाते हैं। यहां तो पूरा शब्द ही आ गया क्षेत्र, ध्यान देना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहां तो अन्न कर लो ना, अध्याहार कर लो ना, क्षेत्र का अन्न किया जा सकता था, लिया जा सकता। दो बार ये क्षेत्र क्यों कहा, गीता में दो बार क्षेत्र शब्द क्यों, एक बार से काम चल सकता था तो दूसरी बार क्यों बोला गया, नहीं बोलना चाहिए था, अन्न कर लेते। मेरे पास 14 टीका हैं श्रीमद् भगवत गीता पर, हम वहां से बोल रहे हैं। उन 14 टीकाओं का मैं अध्ययन किया तो एक टीका में लिखा था, बड़ी सुंदर बात आई उसमें, बड़ी सुंदर बात है, वहां का चिंतन है उस गीता में, उस टीका में लिखा कि भाई ये इसलिए दो बार कहा है सही निराकरण, इसलिए दो बार क्षेत्र क्षेत्र कहा, यदि नहीं कहते तो काम नहीं बनता। बोले क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु, अर्थ निकला क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अरे क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में धर्म करे। हर व्यक्ति डॉक्टर अपने क्षेत्र में, ध्यान देना, वकील अपने क्षेत्र में, प्रोफेसर अपने क्षेत्र में, इंजीनियर अपने क्षेत्र में, विद्वान ब्राह्मण अपने क्षेत्र में, साधु अपने क्षेत्र में, जो जहां पर है हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में क्या करे, क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु। हम धर्म नहीं कर सकते महाराज, बहुत बिजी रहते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, सत्संग में नहीं जा पाते हैं, धर्म कैसे करें। अरे नहीं भाई, वो गीता कह रहा क्षेत्र क्षेत्र, ये तुम डॉक्टर हो क्लिनिक में बैठो वहां पर धर्म कर सकते हो, क्या धर्म हो सकता महाराज। अरे वहां से धर्म हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति पेशेंट आ गया है जो खर्च नहीं कर सकता है, इस पर इतनी क्षमता नहीं है, अरे तुम दया करो उसको थोड़े कम पैसे में दवाई दे दो, कम पैसे है तो वो धर्म हो गया, डॉक्टर ने वहां धर्म कर लिया, ध्यान देना। प्रोफेसर के पास कोई पढ़ने वाला आया है, योग्य बालक है पर इतनी फीस नहीं दे सकता है, कम ले लो उसे पढ़ा दो तो तुमने धर्म कर लिया। ब्राह्मण के पास कोई पहुंचा, कोई कृत्य कराना चाहता है, ब्राह्मण को कोई बात नहीं, थोड़ा ही दो हम तुम्हारा कृत्य कर देंगे। ब्राह्मण ने धर्म कर लिया। सभी को धर्म करने का अधिकार है, ध्यान देना। यहां बात चल रही है, ये वेद व्यास जी आप में क्षमता है, शक्ति है, मेधा है, प्रतिभा है, प्रज्ञा है, मनीषा है, और आप बड़े आराम से सृजन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेखनी उठाइए और भगवान मात्र केवल कृष्ण से परिपूर्ण ग्रंथ को तैयार कीजिए, आपकी जो खिन्नता है वो धीर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वेद अभ्यास जी महाराज ने तत्क्षण उसी क्षण गणेश भगवान का आवाहन किया, गणेश भगवान प्रकट हो गए। हाँ भगवान, कैसा याद किया? बोले हमको नारद जी का आदेश हुआ है, आप सृजन करो, भागवत को लिखिए। मैं भागवत लिखने की इच्छा बना ली है, भावना बना ली, अब मैं भागवत, हम बूढ़े हो गए हैं, लिखनी चलेगी नहीं, अब लिखने का काम आप करें, बोलने का काम मैं करूंगा। और एक बात और देख समझना कि विचारों की जो धारा जब चलती है तो हाथ लिख नहीं पाता है, जो बुद्धि सोचती है वो हाथ कभी लिख नहीं पाता है, ध्यान देना। जो बुद्धि सोचती है उतना हाथ लिख नहीं पाता है, और जो लिख पाता है आदमी उतना पढ़ नहीं पाता है, ध्यान देना। और जो जितना वो पढ़ नहीं उतना वो उस पर चल नहीं पाता है, ध्यान देना। वेद व्यास ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब लिखा हमसे जाता नहीं, आप लेखन का काम करो। जो लोग गए होंगे बद्रीनाथ उनको मालूम होगा, वेद व्यास गुफा से पहले गणेश गुफा पड़ती है, गणेश गुफा पहले पड़ती है, बाद में व्यास गुफा आती है। व्यास जी अपनी गुफा में बैठ करके बोलते हैं और गणेश जी लिखते रहते हैं। गणेश जी ने कहा ठीक बात, आपने मुझे बुलाया, आह्वान किया, लिखने के लिए मैं जरूर लिखूंगा, लेकिन एक बात, एक शर्त है कि मैं बीच में रुकूंगा नहीं। लिखनी चल गई तो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, और रुक गई तो रुक जाएगी। आप सोच ले मेरी शर्त है। वेद व्यास ने कहा अच्छा ठीक बात है, आप लिखनी बंद नहीं करना, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप जो भी लिखोगे, जो भी लिखोगे हम बोलेंगे, वैसे नहीं लिखते जाओगे, उसका पहले अर्थ समझोगे, अर्थ को समझोगे तब लिखोगे। यदि इस प्रकार से चलता है तो ठीक है। गणेश जी ने कहा ठीक है, हम समझ के ही लिखेंगे, अर्थ को समझ के ही लिखेंगे। वेद व्यास ने गुंजाइश बनाई, मैं तो बूढ़ा हूं, कभी रेस्ट भी करना होगा, ये तो विवाह है। वेद व्यास महाराज करते क्या हैं? जब थोड़ा विश्राम करना होता है तो बीच में एक कूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कूट। आप सब सुलझे हुए लोग हैं, कूट बोलते हैं, ऐसे कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, सरलता से उदाहरण दे दूं, कूट का प्रयोग किया। क्या कूट का प्रयोग किया? कूट क्या है? बोले हरे बोले, हरे बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर हरी में मिल गए हर भय बड़े उदास। ये कूट है, एक शब्द का अनेक बार प्रयोग आया, और कब किस समय किस अर्थ में कहां पर प्रयोग आया, लगाओ अर्थ। वेद व्यास जी को विश्राम करना था, इतना बोल कर वो तो अपने राइस करने चले गए। गणेश जी ने सोचा हरे बोले, हर जगह अलग अर्थ है, हर बोले, ध्यान से सुनना, हर बोले हर ने सुनी। निघंटू को पढ़िए, निघंटू हमारे ग्रंथ है, जैसे अमरकोश है ना, अमरकोश की तरह निघंटू भी एक ग्रंथ है, निघंटू है, अमरकोश है, ऐसे हमारे कई एक ग्रंथ हैं। तो वहां लिखा है, उनमें ये सब बातें आती हैं। हरि बोले, सांप बोला, सांप को हरि बोला जाता है। हरि बोले हर ने सुनी, मेढक बोला और सांप ने सुना, ध्यान देना। मेढक बोला सांप ने सुना, हर बोले हर ने सुनी और हर गए हर के पास। सांप मेढक के पास में गया, हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास। और जब सांप ने मेढक को देखा बड़ा खुश हुआ, क्या बात है बहुत सुंदर, कई दिन से भोजन नहीं मिला था। हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास और हर हरी में मिल गए। हरि महाराज मेढक महाराज सांप में मिल गए, हर हरी में मिल गए। वृक्ष पर बैठा था एक बंदर, उसको भी हरि कहते हैं, उसको भी बंदर बैठा था ऊपर। हर भय बड़े उदास, अरे ये कहां से आ गया, बेचारे मेढक को खा गया। ये कूट है, ये क्या है? ऐसा महर्षि वेद व्यास जी महाराज कूट का प्रयोग करते हैं। बात तय हुई, लेखनी उठाई गई, ग्रंथ का आरंभ किया गया। श्रीमद् भागवत की विधिवत रचना संपन्न हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इदामृदे कौरव सृज्यमानम्, इदामृदे कौरव सृज्यमानम्, वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु, वृकोदरा विद्धि गधा विमर्शना, भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। देखिए कई बार व्यक्ति के अंदर जो प्रतिशोध की भावना होती है बहुत गलत होती है। प्रतिशोध बहुत बड़े अनर्थ करा देता है। व्यक्ति के अंदर प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, बात को समाप्त करना चाहिए, ईर्ष्या को पालना नहीं चाहिए। ये ईर्ष्या प्रतिशोध द्वेष जिसके अंदर पनप जाता है, इस जन्म में भी दुखी रहता है और आगे चलकर के ऐसा व्यक्ति या सांप बनता है या बिच्छू बनता है, या बाघ बनेगा या भेड़िया बनेगा, या सिंह बनेगा या भालू बनेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रसोद है। इन योनियों में वो जाता है। इदामृदे कौरव सृज्यमानम्, वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु, वृकोदरा गदाभिमर्ष, भग्नोर दंद्रे दंते धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र पुत्रे दुर्योधन जो है, भग्नोर दंदा भीम ने गदा लेकर के, संक्षेप से बोल रहा हूं, आगे मैंने बहुत कथाएं कहनी है इसलिए कोई व्याख्या भी ज्यादा नहीं कर रहा हूं। गदा लेकर के जंघाओं को तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने देखा, अरे दुर्गति की है। दुर्योधन से कहा मैं इसका बता लेके अभी आता हूं। अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा ने जाकर के सोए हुए पांचों पुत्रों का वध कर दिया, उनका सिर काट के लाया। केवल कथा ही कह रहा हूं। सिरों को लाया, अंधेरा है, रात्रि का समय है, कृष्ण पक्ष है, अंधेरा है। उन सिरों को, मुंडों को लिया और मुंडों को लेकर के दुर्योधन ने रात्रि में ऐसे ऐसे दबाया। प्रकाश तो है नहीं, लाइट तो है नहीं, जब तालू को दबाया और तालू लपर लपर हो रहा था, यूं लचक रहा था। अरे अश्वत्थामा, मुझे लगता तू अनर्थ करके आया है, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है। बोले नहीं नहीं, मैं पांचों को काट के लाया हूं, पांचों का सिर काट के लाया हूं, ये पांचों भाई हैं। अरे तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है, पांच भाई नहीं है, इनके तालू को तो देख तू, प्रकाश तो है नहीं। मुझे लगता है कि तूने उन पुत्रों का वध किया, तूने अच्छा नहीं किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान देना, भगवान कृष्ण की लीला है। अर्जुन दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, बांध के लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। लीजिए बताइए हो क्या दंड दूं। देखिए धैर्य को देखिए, कितना बड़ा धैर्य। यहां विवेचना आता है, माता शिशूनाम अरे माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, निरस्य घोरम परितप्यमानः। जिस माता के शिशुओं का वध कर दिया गया हो, क्या उसके हृदय में ताप होगा, क्या उसके अंदर वेदना होगी, दर्द होगा, परितप्यमानः, कितनी वो दुखित और क्षुभित होगी। लेकिन धन्य उस मां को है जो बांध के ले जाया गया, कहा कि बोलिए कि साथ क्या व्यवहार किया जाए। ध्यान देना, जो आदमी विपरीत परिस्थिति में भी शम रहता है, विपरीत अवस्था में भी जिसके अंदर धैर्य रहता है, वही कुशल आदमी भी, सूझबूझ वाला है, वही मनीषी है, वही बुद्धिमान है। अरे कष्ट पड़े चिंता न करो, सुनना ध्यान से, कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं। अरे कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं, और फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पर मुरझाते हैं। कष्ट पड़े चिंता न करो, हमको जरा खुशी मिल जाए तो हम उछल जाते हैं, और जरा कोई मुसीबत आए तो कुमला जाते हैं। वो गुलाब का फूल कहता है, गुलाब का फूल कहता कि हमको देखो, हमारे पीछे कांटे चुभे हुए हैं, हमारी पीठ में कांटे चुभे हुए हैं, लेकिन मेरा चेहरा खिला हुआ है, चेहरा खिला हुआ, एक कांटे नहीं अनंत कांटे चुभे हुए हैं, लेकिन मैं हंस रहा हूं। हंसते रहो, दुख पड़े तो ईश्वर को कोसना शुरू मत कर दो, कष्ट आए तो रोना शुरू मत कर दो, भगवान को ओलहाना देना शुरू मत कर दो, हे ईश्वर तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। लोग क्या क्या बोलते हैं, कभी नहीं ऐसा बोलना चाहिए। देवकी के 6 पुत्रों का वध हुआ, ध्यान देना, सूझ है, समझ है। द्रौपदी के 5 पुत्र धड़ पड़े हुए हैं सामने, अपराधी को लाया गया, द्रौपदी से पूछा गया, बताइए इसको क्या सजा दी जाए, क्या सजा दी जाए। द्रौपदी ने मालूम क्या बोला, बोले इथा काष्ठम इष्ठा काष्ठम च काष्ठम च शमेतायाम महादधौ, इथा काष्ठम च काष्ठम च शमेतायाम महादधौ। अरे जिस प्रकार से किसी समुद्र के अंदर तमाम रेत इकट्ठा हो जाता है, उस टीले के ऊपर तमाम लहर में लकड़ियां आती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं, और दूसरी लहर आती है तो उनको बिलक बिलक कर देती है। इथा काष्ठम च काष्ठम च शमेतायाम महादधौ, एक लहर ने लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया और दूसरी लहर आई उसने बिलक बिलक कर दिया। कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी सूझ, कितना बड़ा चिंतन, कितना बड़ा धैर्य। द्रौपदी ने कहा कि हमारा ऐसा ही मिलन है, जितने दिन का हमारा इनके साथ संयोग था हमारे पुत्र रहे, और जब उनका वियोग का समय आया तो कोई माध्यम बना, किसी न किसी ब्याज से माध्यम में ये सब घटना घटती है, इसलिए इसके साथ कोई गलत काम नहीं करो। मुच्चिताम मुच्चिताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, विप्रदेव है, मुच्चिताम को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, ऐसा धैर्य होना चाहिए। समझो थोड़ा, बहू ने कोई गलती कर दी, कथा घर में लाओ, अपने पे लाओ। बहू से कोई त्रुटि हो गई, हम गर्म हो गए, बहू ने गिलास कांच का पड़ा, गिर गया तो टूट गया, सासू बहू पे नाराज हो गई, और बेटी से गिरा तो क्यों नहीं जी, बहू से हाथ से गिरा तो टूट गया तो कोई गुस्सा नहीं, कोई फटकार नहीं, कोई डांट नहीं, ये भेद कैसा। ऐसा नहीं, घर में लाओ कथा को, ठीक है ना, सम व्यवहार करो, विषमता नहीं, समत्व का दर्शन, समत्वम योग उच्चते, आप योगी हैं, आप महात्मा हैं, आप पुजारी हैं, आप भक्त हैं, कब? जब समत्वम, समता का व्यवहार होना चाहिए। बड़ी सुंदर बात, द्रौपदी ने ऐसे कह करके उसको छुड़ा दिया। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताजीव धर्णव, ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये चर्चा सूत जी महाराज ने शौनकादियों को सुनाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।
क्या सोच करे पागल मनुवा, क्या सोच करे पागल मनुवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनुवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस छोटे जग का मूल नहीं क्या, इस छोटे जग का मूल नहीं क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनुवा। आशाएं कभी हो पूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हो पूरी नहीं। यह सोच तनिक जीवन घटिका, यह सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा चल की देना रीति गया, क्या सोच करे पागल मनुवा। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परोही तीर जन्म लिया जिसने। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परोही तीर जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के। मृत्यु अधीरों का बन गीत गया, क्या सोच करे पागल मनुवा, जो बीत गया सो बीत गया। इसे छोटे जग का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनुवा। जय राधे 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 गोविंदी राधे, जय राधे राधे जय हो गोविंदी राधे, जय राधे 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 गोविंदी राधे, जय राधे 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 गोविंदी राधे गोविंद राधे। को जान खिली न खिली
राती को जान खिली न खिली
मलिया चल की सुच सी तल मंदी
मलिया चल की
सुच सी तल मंदी सुगंध समीर मिली न मिली
सुगंध समीर मिली न मिली
कल काल कुठार लिए फिरता
कल काल कुठार लिए फिरता
तनी नम्र पे चोट छिली न छिली
छोटी
जिली न जब लि हरि नाम हरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली
फिर अंत समय में हिली न हिली
धे राधे राधे गोविंद राधे
राधे
राधे राधे राधे गोविंद राधे
राधे राधे राधे गोविंद राधे
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज विवेचन करते हैं गंतुम कृतमतिम ब्रह्मन् गंतुम कृतमतिम ब्रह्मन् द्वारिकामृतमास्थितः उपलेभे विधावन्तीं उत्तरांभे विभला। जब भगवान श्याम सुंदर पांडवों को विजय दिला के गद्दी पर बैठा करके सोचा अब मेरा कार्य पूरा हो गया। भगवान ने कहा मुझे द्वारिका जाना चाहिए। गंतुम कृतमतम ब्रह्मन् द्वारिकामृतमास्थिता। द्वारिका जाने के लिए रथ की तैयारी कराई गई, तैयारी हो गई। उसी समय उपलेभे भी धावंती उपलेभे भी धावंती उत्तरांभे विभला। उत्तराभय से भयान्वित होकर के डर करके बड़ी तेजी से जोर जोर से चिल्लाते हुए भगवान की ओर दौड़ी। हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे द्वारिकाधीश, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। कोई संकट पड़े तो भगवान को बुलाओ, ध्यान देना। कोई मुश्किल मुसीबत आए तो भगवान का चिंतन करो, ईश्वर को पुकारो, जगत को नहीं, दुनिया को नहीं। उत्तरा ने भगवान को आवाज लगाई और ये मत सोचना कि हमारी आवाज क्या भगवान तक पहुंचेगी। इतनी आवाज भगवान तो बहुत दूर है, वो द्वारिका में बैठे हैं, वहां पहुंचेगी आवाज? अरे भाई जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। अरे चीटी के पगनू पुर बाजे, चीटी के पगनू पुर बाजे, वह भी साहेब सुनता है। जब चीटी के पग में बंधा हुआ नूपुर बजता है, वह आवाज भी जब हमारे द्वारिकाधीश से पहुंचती है, तो क्या आवाज की आपकी आवाज वहां नहीं पहुंचेगी? जरूर जरूर पहुंचेगी, जरूर जरूर पहुंचेगी। एक बार दिल से आवाज लगा के देखो, एक बार दिल से आवाज लगा करके तो बोल देखो। उत्तराने उत्तरा भय विभलाम भय से भयान्वित होकर के जो उसने पुकार लगाई आवाज लगाई भगवान तुरंत उसी क्षण ब्रह्म सूत्र में सूत्र आता है अंगुष्ठ मात्रम ब्रह्म उपासना पाद। ब्रह्म सूत्र में चार पाद हैं, ध्यान देना। उपासना पाद में सूत्र आता है अंगुष्ठ मात्रम ब्रह्म। आज भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का अपना स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए चक्षुधुंध लेकर के। गदा पद्मधारी भगवान विष्णु भगवान ने उसके उदर में प्रवेश किया, ध्यान देना। वो रक्षा करने वाला, मारने वाला, मारने वाले से बचाने वाला। मारने वाला दो हाथ वाला होता है और बचाने वाला अनंत हाथ वाला होता है। बोलो क्या रक्षा नहीं होगी? जरूर जरूर रक्षा होगी, अवश्य रक्षा होगी। जाको राखे साइया, अरे जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई और बालन बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। जिसको परमात्मा संरक्षण करता है, संवर्धन करता है, जिसकी वो रक्षा करना चाहता है, जगत का जीव उसे कोई मार नहीं सकता है। जो द्वारकाधीश भगवान बैठे हैं रक्षा के लिए, तो ये क्या कर सकता है? अश्वत्थामा ने जो तीर चलाया गर्भ खंडित करने के लिए, भगवान रक्षा करो रक्षा करो, मुझे खत्म कर दे, पर मेरे उदर की, मेरे पेट में, मेरे अंदर जो पल रहा है आपका कुल का दीपक, मेरे कुल का दीपक नष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान दौड़े, अंगुष्ठ के सदृश रूप बनाया, अंदर प्रवेश किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अंदर प्रवेश करके भगवान ने रक्षा की। क्यों? किस लिए? एक आश विश्वास, एक आश विश्वास। आशाएं बहुत जगह नहीं जोड़ो, आशा केवल एक ही रखो। एक के आशान्वित बनो, एक के आशावान रहो। इस आशा को जगह जगह पर मत जोड़ो, केवल एक के बनो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं भक्त्या तु अनन्या, भक्ति रभ्यभचारिणी। भगवान कृष्ण बोलते भक्ति रभ्यभचारिणी, भक्ति में व्यभिचार नहीं आना चाहिए, अनेकत्व तो नहीं आना चाहिए। ऐसे जुड़ो, उत्तरा ऐसे ही जुड़ी है। भगवान ने आकर के रक्षा की, भगवान ने आकर के रक्षा की। ध्यान देना, वरना इस गर्भ के अंदर आपको एक कोठरी में बंद कर दिया जाए और ताला लगा दिया जाए और सारी खिड़कियां भी बंद कर दी जाएं, घुटन होती है, व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है, बेहोश हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। अरे कोठरी तो है, अरे क्या यहां जाने कोई हवा है, विंडो है, कोई पंखा है, कोई एसी है, अंदर क्या है बताइए? किसने एसी लगाया और किसने कूलर लगाया, किसने पंखा लगाया? कोई सुविधा, कोई अनुकूलता? जैसा जो भ्रूण होता है उसी में तो जीवित रहता है। और बड़ी विलक्षण स्थिति है, मलमूत्र का ढेर है, उस मलमूत्र के अंदर वो बालक होता है। वहां उसकी रक्षा कौन करते हैं? सोचो ना, चिंतन करो ना, कौन करता है रक्षा? वो भगवान ही तो करता है, भगवान रक्षा करता है। आज भगवान ने उत्तरा के पुकारने पर परीक्षित महाराज की रक्षा की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संक्षेप में जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने रक्षा की, रथ तो तैयार खड़ा ही था, रथ तो तैयार खड़ा ही था। भगवान ने अपना काम किया और गंतुम गंतुम कृत मतिम ब्रह्मन् द्वारिकाम रथमास्थित। भगवान बस रथ पर विराजमान हो गए। अच्छा, कुंती बुआ, अच्छा अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अच्छा ठीक है आप सब ठीक ठाक से हैं, हमारी हार्दिक इच्छा थी कि आप सब यथावत हो जाओ, बस आप सब ठीक हो गए हैं, यथावत हो गए हैं। अच्छा अब मैं द्वारिका में बहुत दिन हो गए हैं, हमारा तो 16108 हैं, बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था है, आप तो परेशान एक से ही हो जाते हैं। भगवान बोले मेरा तो 16108 हैं, एक की बात कहें कौन कहे। अरे भाई मुझे भी तो कुछ सोचना है, कुछ देखना है, हम द्वारिका जाना चाहते हैं, हम द्वारिका। भगवान रथ पर बैठ गए, सारथी को संकेत किया, सारथी ने लगामों को संभाला है। कुंती ने विचार किया जिस परमात्मा के सामीप्य में रहने से हम पर कोई भी दुख आया लेकिन दुख ऐसे निकल गया जैसे कोई दुख आया ही न हो। मेरे प्रिय भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, लाक्षा ग्रह के अंदर जलाने का प्रयास किया गया, वनवास दिया गया, हिडम्ब से रक्षा की, कितनी कितनी जहर के लड्डू बनाए गए, उसमें जहर को घोला गया, डाला गया, कहां कहां रक्षा नहीं की। हे भगवान, हे दीन बंधु दाता, हे करुणा वरणालय, अब आप चले जाएंगे, मुझे छोड़ के आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे। एक बड़ी सी थाली सजाई है, कुंती देवी ने पुष्प रखे, धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि तैयार किया और तैयार करके मन में सोचा कि जिन्होंने इतने दिन मेरी रक्षा की है, हमारे अंग संग रहे हैं, एक बार उनका भाव से, दिल से, हृदय से उनका एक बार अभिवंदन तो मैं कम से कम कर दूं। थाली लेकर के जब आगे बढ़ी कुंती जी, बुआ जी ध्यान देना, ध्यान देना, जब चंदन उठाया और चंदन से भगवान का वंदन किया, भगवान तो हृदय की बात जानते हैं, हृदय के अंदर भक्ति का उद्रेक पैदा हुआ, भक्ति का भाव पैदा हुआ, एक ऐसी लहर आई, ऐसी लहर आई, उस लहर ने भगवान श्याम सुंदर को डुबो दिया, भाव की लहर में श्याम सुंदर जी खो गए। जब चंदन लगाया और चंदन से वंदन किया, चंदन से वंदन करते ही भगवान बंधन में बंध गए, भगवान बंधन में बंध गए, और बंधन में बंधने पर ध्यान देना, भगवान कृष्ण द्वारिका को जाने वाले हैं, रथ पर बैठ चुके हैं, रथ पर बैठ चुके हैं, जाने वाले हैं, और जाने वाले भगवान को ध्यान देना। कुंती जी सोचती कि रुक जाए तो बहुत अच्छा है, रह जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं जाए तो बहुत अच्छा है। कुंती ने मन में सोचा, ये मेरे श्याम सुंदर, ये मेरे नंदनंदन, मुरली मनोहर, द्वारिकाधीश, यदि आप रुके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप नहीं जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, भगवान तो अंतर्यामी है। क्या समझे, दशम स्कंद में कहा है अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं, भगत जैसा कहता है, जो बोलता है, मैं वैसा ही करता हूं। ब्रज में किसी भावुक भक्त ने कहा है कि नाना भांति नचायो भक्तों ने मोको, नाना रे भांति नचायो भक्तों ने मोको, नाना रे भांति, जैसे जिसने जो कहा हमने वैसा ही किया है, मैं तो भक्त की भावना को देखता हूं। भावो ही विदिते देवो तस्मात भावो ही कारणम, मैं तो भाव का भूखा हूं। आज कुंती माता ने भाव प्रकट किया, हृदय में भाव बनाया, श्याम सुंदर रुक जाएं, भगवान रुक जाएं, चंदन से वंदन किया, सुंदर सी माला पहनाई है, अक्षत लगाया है, धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया है, अर्पित करने से भगवान खुश हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ऐसी भक्ति प्रकट की, और भक्ति के प्रकट होने से भगवान का हृदय पिघल गया, भगवान द्रवीभूत हो गए। ऐसी भक्ति को प्रकट करो, ध्यान देना, भक्ति कहने की वस्तु नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। भक्ति कहने की वस्तु क्यों नहीं है? भक्ति का स्थान हृदय है और कहने वाली चीज है वो मस्तिष्क है। कहता मस्तिष्क है, भाव हृदय में होता है और ज्ञान बुद्धि में होता है। कहा बुद्धि से जाता है, कहा बुद्धि से जाता है। भाव की बात तो, दिल की बात तो हृदय जानता है, हृदय जानता है। भक्ति के मुझे कितना प्रेम है भगवान से, मैं कितना भगवान से स्नेह करती हूं, मैं भगवान को कितना चाहती हूं, मेरी कितनी बड़ी अनन्यता है भगवान के प्रति, ये भाव कभी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वाणी बोल नहीं सकती है, वाणी तो मुंह खो जाती है। नारद दर्शन में महर्षि नारद जी लिखते हैं, मुंह का स्वादन वत, मुंह का स्वादन वत। गूंगे को आप, गूंगे को मिश्री खिलाओ और उसको पूछो कि कितनी मीठी है, तो वो गूंगा नहीं बोल सकता है इतनी मीठी है, मुंह का स्वादन वत। किसी शायर ने भी लिखा है, किसी शायर ने भी लिखा है कि मोहब्बत साइनी अल्फाज में लाई नहीं जाती, मोहब्बत साइनी अल्फाज में लाई नहीं जाती, वह नाजुब हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास मखसूस दिल होते ही वह नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये प्रेम, ये प्रेम क्या वाणी का विषय हो सकता है? कैसे मुख से कहा जा सकता है? जैसे हमारे वेदांत में ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार से भागवत में ये जो भक्ति है वो भी अनिर्वचनीय है, निर्वचन संभव नहीं है। भक्ति को वाणी से नहीं कह सकते हैं, ये भक्ति तो केवल हृदय का विषय है। हृदय हृदय को किसी को जानना है, अभी तक कोई पैमाना नहीं बना है प्रेम को नापने का, ध्यान देना। अभी तक कोई थर्मामीटर नहीं बना है, बुखार का थर्मामीटर है, लगा के देख लेते कितना बुखार है, लेकिन हमारा तुमसे कितना प्रेम है, भगवान से हम कितना प्रेम करते हैं, बोलो कौन सा थर्मामीटर बना है, कोई पैमाना बना है नापने का, कौन सा पैमाना है? हाँ, यदि नापना चाहते हो, नापना ही चाहते हो, तो दिल के पैमाने से नापिए, हृदय के पैमाने से नापिए, क्योंकि भक्ति तो हृदय में रहती है, तो केवल नापने का माध्यम केवल हृदय है। ऐसी भक्ति भाव निष्ठा पूर्वक कुंती जी ने स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की, दिव्य स्तुति की, बड़ी प्यारी स्तुति की। स्तुति से भगवान ने भगवान को प्रभावित कर दिया, भगवान गदगद हो गए, आह्लादित हो गए। स्तुति को सुन करके भगवान गदगद हो गए, भगवान रथ से उतर आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान रथ से उतर आए, कहा कुंती देवी इच्छा थी जाने की, अब नहीं जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, आपका भाई आए, अहमत हो, आपका भाई आवे और भाई कहे मैंने शाम को जाना है, आपका दिल करे कि भाई को रोकना है, तो कैसे रोकोगी? है जी, भाई आया है, दिल कहता है कि भाई को रोकना है, पिताजी आए हैं, बेटी कहती है, सोचती है आज पिताजी रुक जाएं तो कितना अच्छा होता, मैं दिल की बात कर नहीं पाई, सबके सामने रात मिलती तो मैं पिताजी से कुछ कहती, मैं भाई से कुछ कहती, लेकिन क्या करूं, समय नहीं मिला, सब लोग घेरे रहे उनको सारे दिन, मैं कुछ बात नहीं कर पाई, रुक जाती तो कैसा, कितना अच्छा हुआ। ध्यान देना, प्रेम एक प्रेम भाई के प्रति होता है, पिता के प्रति होता है, और एक प्रेम, ध्यान देना, एक प्रेम भाई के प्रति होता है और एक प्रेम जमाई के प्रति होता है। कैसा लग रहा है? भाई आया, बहन नाली पर बैठे जूने से बर्तन मल रही थी, साफ कर रही थी, और बहन ने एक टूटी फूटी फटी 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 पुरानी बोरी फेंक दी, बैठ जा, वो ही नाली पर बैठ गया। ऐसे भाई से बातें करने लगी बहन, और बहन भाई से बातें करने लगी, बातें करते करते घंटे बीत गए, बहन ने न चाय पूछा न पानी पूछा। ध्यान देना, न चाय पूछा न पानी पूछा, इतने विभुल ग्रह के कार्य प्रेम इसने ऐसा उमड़ा, ऐसा भाव उमड़ा कि भाव पानी भी भूल गए और चाय भी भूल गए, कोई भी सत्कार सम्मान नहीं। ध्यान देना, उसी घर में जमाई आया। कौन आया? जमाई आया। हड़कंप मच गया पूरे घर में, हल्ला मच गया पूरे घर में। सोफा किधर गया है? सोफा कहाँ है? चादर बिछाओ, ये बिछाओ, ये लाओ, ठंडा लाओ, गर्म लाओ, वो लाओ। हड़कंप मच गया घर के अंदर। जमाई आया कि उग्रवादी आया? कौन आया? बोले भैया कन्या राशि, ध्यान देना, कन्या राशि सदा स्थिता, कन्या राशि सदा स्थिता, जामा तो दशम ग्रह। नवग्रह आपने सुने हैं, कहे दसवां ग्रह जमाई भी होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक जगह प्रेम दिखता है पर प्रेम है नहीं, ध्यान देना। एक जगह प्रेम दिखता है पर है नहीं, और एक जगह प्रेम दिखता नहीं पर है। भाई में प्रेम दिखता नहीं पर कितना प्रगाढ़ प्रेम है, और जमाई में प्रेम बिल्कुल नहीं है पर दिखता कितना है। हो सकता है ठीक से सत्कार नहीं होगा, हमारी बेटी का गला दबाएगा रात को। देख मैं गया था, चाय तक नहीं पूछा, पानी तक नहीं पूछा, और ढंग से बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या तेरा बाप, क्या तेरी मां, तेरी बहन, ऐसा ऐसा वैसा वैसा कुछ समझे। एक प्रेम में दिखावा है, एक प्रेम में सच्चाई है। बहन भाई को रोकना चाहती, बोलो कैसे रोकेगी? कुंती ने तो भगवान को रोक लिया है। कुंती ने तो भगवान केवल प्रेम से रुकते हैं। कैसे रुकते हैं? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। और प्रेम दर्शन में खोजना हो तो पंचदशी में चले जाओ। पंचदशी में लिखा है कि इयम आत्मा परानंद और परम प्रेमास्पदम यत मान भूयम भी भूयास्मी इति प्रेमा तो मन वीक्षते। पंचधनी वेदांत जी महाराज कहते हैं कि क्या प्रेम है? वो वेदांत का प्रेम है, ये भागवत का प्रेम है। संबंध इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा ध्यान देते जाओ इधर उधर भी प्रेम पर। तो पंचदशी कार्य विद्यारण जी ने प्रेम बताया, एम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदम्यत मान भूवम ही भूयास्मी इति प्रेमात्मा नीचते। प्रेम है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। ऐसा भगवान से प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो। कुंती ने ऐसा भगवान को प्रेम प्रस्तुत किया, स्तुति गाई, स्तुति गाई। हो क्या कहे, हम जब स्तुति गाएं, हम जब श्लोक गाएं, हमारे यहां स्तुति चलती है। करार बिंदे ने पदार बिंदम, कुछ माताएं बात करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, हैं? तब आप भी स्तुति गाओ। मैंने अपने प्यारे भैया गृह जी से थोड़ा निवेदन किया था कि जो रोज होता है, यदि कोई उसका बन जाए तो सभी माताओं के हाथ में होगा, फिर ये बातें नहीं करेंगी, पढ़ेंगे ऐसे, हैं? वो बातें बंद हो जाएंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात, बड़ी सुंदर बात। भगवान को प्रेम में बांध लिया। भगवान बोले अच्छा ठीक है, अब हम नहीं जाएंगे। कुंती तुमने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, हम तो प्रेम में बिक जाते हैं, उसके हो जाते हैं, हम उसके बन जाते हैं। कुंती मेरी दिली एक इच्छा है, हार्दिक भावना है, तुम्हारी न हो पर मेरी भावना है कि आप आज कुछ मुझसे मांग लो, कुछ मांग लो। कुंती ने कहा मेरे भगवान ये मांगना तो अपराध है। नभई भक्ति सबई बणिक, भागवत में आया दसवें स्कंद में, नभई भक्ति सबई बणिक। अरे तो व्यापार हो गया, हमने कुछ दिया आपने कुछ दिया, अदला बदला हो गया। न भाई भक्ति, वह भक्ति नहीं, वह प्रेम नहीं। प्रेम में न दिया जाता न लिया जाता है, प्रेम में देना लेना तो होता ही नहीं है, वो तो व्यापार हो गया। यदि प्रेम में हम मंदिर में गए, भगवान को माला चढ़ा दी, कुछ फल चढ़ा दिए और उसके बदले में कुछ मांग लिया, तो वो भक्ति नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो क्या व्यापार है, क्या है? है? अभी तक क्या करते रहे, बोलते क्यों नहीं है? अभी तक क्या करते रहे, लगता व्यापारी करते रहे। बिल्कुल मांग नहीं, बिल्कुल डिमांड नहीं है। ऐसे भाव में विभोर हो जाओ, तन्मय हो जाओ, मस्त हो जाओ, भूल जाओ। नवई भक्ति शवई बड़े, कुछ मांगो, बोलो क्या चाहिए, जो बोलोगे। कुछ मांगना जरूर पड़ेगा। अब आप नहीं मानते हैं तो अब ऐसा है कि जिससे हम आपसे अभी तक मिले रहे, आप हमसे विलग नहीं हुए हो, हमको वही दे दो। मांगो वही दे दो, जो मांगोगी दे दूंगा। एक बार बोलो। कुंती ने विलक्षण ही मांगा जो दुनिया में कोई नहीं मांगा। कुंती ने क्या मांगा, बोले विपदा शंतु न शाश्वत, विपदा शंतु न शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा हमको विपत्ति आपत्तियों से ही तो आप मिले रहे, भगवान कुछ देना चाहते हो तो हमको क्या दें, आप आपत्ति दें, विपत्ति दें, मुश्किल और मुसीबत दें, कठिनाइयां दें, दिक्कतें दें। ध्यान देना, सच बोलना, ईमानदारी से बोलना। आप भगवान के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, माला चढ़ाते हो, क्या मांगते हो? सुख क्या मांगते हो? और मिलता क्या है? है जी, कुंती मांगी दुख और मिल रहा है। हमारे यहां कहा गया है चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, पहिए का जो पहिया चलता है, जब आप मांगना शुरू करते हो, मांगते मांगते जब आप कहते हो हे भगवान सुख देना, इतने में चक्र दुखवाला आ जाता है। क्या मिल जाता है? दुख मिलता है। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। भगवान बोले तुमने क्या मांगा कुंती, ये क्या मांग लिया? अरे सुख मांगना चाह, तुमको सुख मांगना था। कुंती बोली सुख के माथे सिल पड़े, अरे सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़ जाए, पाला पड़ जाए, ओला पड़ जाए, सुख के माथे सिल पड़े, अरे नाम हृदय से जाए। जब सुख आता है तो ये दुनिया भगवान को भूल जाती है। सुखिया से यति दूर प्रभु, कुंती बोल रही है हमें भगवान मालूम है कि सुखिया से यति दूर प्रभु, और निकट दीन के जान, दुखियन को मिलते रहे दीन बंधु भगवान। भगवान हमने तो अभी तक ही देखा है जो दुखी होता है, जो भगवान के सामने आत्मनाद करता है दुखी होता है। तात्पर्य यह नहीं है कि हम गरीब हो जाएं, तात्पर्य यह नहीं कि हम निर्धन हो जाएं, तात्पर्य यह है कि हे प्रभु हम अकिंचन हैं, हम पर भक्ति नहीं है, हमें अपनी भक्ति दीजिए, हम भक्ति से अकिंचन हैं, आपके प्रेम से अकिंचन हैं, हम आपके प्रेम को अकिंचन हैं, हम आपसे प्रेम मांग रहे हैं, आपकी भक्ति मांग रहे हैं, हम भक्ति के गरीब हैं। किसे गरीब हैं? पैसे के नहीं। भगवान और आप कोठियां दे दें और आपकी तिजोरियां धनों से भर दें, भक्ति की कमी है से प्रभु भक्ति दो, क्या दो हमको? कुंती ने बहुत अच्छा मांगा, बहुत अच्छा मांगा। कुंती बोले प्रभु आप शायद कहते होंगे कि तुमने सही नहीं मांगा, पर हमारी सूझ में, हमारी समझ में, अरे विपत्ति नहीं, विपत्ति नहीं, ए प्रभु की दाया और भोग भोगा ये छुड़ा बे माया। ये विपत्ति नहीं है, दुख नहीं है,
भोग भुआ है, जो हमारा भोग है, जो मैंने भोगना ही है उसको भोगाती है, भोग भोगाए छुड़ावे माया, जो व्यर्थ में ममता आसक्ति बेटा नाती पोते में हमारी लगी हुई है। दुख आते हैं, बीमारी आती है, क्लेश आते हैं, तो होता क्या है, धीरे धीरे परिवार का प्रेम कम हो जाता है, परिवार का प्रेम कम हो जाता है, हमें प्यार का परिचय मिल जाता है, कितना मुझे चाहते हैं। तो भोग भोगाए छुड़ावे माया, विपत्ति नहीं ये प्रभु की, ये भगवान की दया है, कृपा है, ये भगवान ये विपत्ति नहीं है, ये आपत्ति नहीं है, ये मुश्किल मुसीबत नहीं है, ये तो आपकी कृपा है, ये दुख आपने दिए तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रामायण में देखो, थोड़ा रामायण में
कहे हनुमंत, अरे कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जप तप सुमिरन भजन न होई।
विपत्ति क्या है रामचरितमानस में, विपत्ति क्या है, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, वही विपत्ति है जो भजन पूजा पाठ न हो, वो विपत्ति है। ध्यान देना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, हमको विपत्ति दो भगवान, क्या दो, हम उसमें आपका विस्मरण नहीं करेंगे, आपको स्मरण नहीं करेंगे, आपको भुलाएंगे नहीं। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की, स्तुति को सुना है, भगवान प्रभावित हो गए हैं, कुंती माता ने भगवान का हाथ पकड़ा और रथ से उतर आए और लेकर के अंदर गए, विराजमान कराया, बढ़िया सुंदर आसन दिया, आसन पर बैठ गए और बैठ करके भगवान का वहां पर वंदन सभी ने मिलकर के किया। भगवान ने कहा हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में सब हंसते हैं, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
जय हो।
संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, संसार की
नदिया के दोनों ही किनारे हैं।
छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
हो छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
छोड़ू मैं किसे भगवन,
हनुमंत विपति प्रभु सोए, कहे हनुमंत
विपति प्रभु सोए,
कहे हनुमंत विपति प्रभु सोए, कहे हनुमंत
विपति प्रभु सोए।
जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न हो।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये हम हाथ क्यों उठाते हैं? हाथ उठाने में संकोच नहीं करो। मालूम है हाथ क्यों उठाए जाते हैं? हाथ इसलिए उठाए जाते हैं, शायद आपने कभी सुना हो कि किसी देश का जवान किसी देश में युद्ध करते करते पहुंच जाता है, उधर से गोली यूं दिखाई जाती है, मार दो इसको, क्या कर दो, मार दो। तब वो करता क्या है, बचने का एक ही तरीका है, हथियार छोड़ के यूं। यदि आपने यूं कर दिया तो फिर ये कानून है, नियम है कि बंदूक नहीं चलेगी, गोली नहीं मारी जाएगी। क्या समझे? हम भगवान के दरबार में आए हैं, प्रभु के दरबार में आए हैं, यहां संकल्प करें, हे प्रभु हम तो उसको छोड़ के आए हैं, अब केवल आपके यहां आए हैं, तो माया का आप पर वार नहीं होगा। क्या समझे? मोह का वार नहीं होगा, आसक्ति का वार नहीं होगा, राग का वार नहीं होगा,
हम हाथ किस लिए खड़े करते हैं? आप करोगे कि नहीं करोगे हाथ खड़े? करिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। इसका मतलब होता है कि हे प्रभु हम आपके हो गए, हे प्रभु हम आपके हो गए। हाथ उठाने का मतलब है कि हम आपके हो गए, और जब उनके हो गए फिर तो कहने का उन्हीं का तो बनना है। हम दुनिया के नहीं हैं, हम दुनिया के, कुंती ने यही तो कहा कि हम दुनिया के नहीं प्रभु आपके हैं प्रभु। और प्रभु को अपना बनाया तो भगवान रथ से उतरे, और उतर करके द्वारिका जा रहे थे, उतर करके आए और पांडवों के साथ कुंती के साथ आकर के बैठ गए। कुंती ने कहा भगवान तो जा रहे थे, सुना ध्यान से, हमारी स्तुति से भगवान लौट आए, हमारी प्रार्थना से भगवान लौट आए। कुंती ने कहा मेरी स्तुति से लौट आए? भगवान कृष्ण की बहन बोली आप क्या कह रहे हैं, हमको मेरा भैया मिलके नहीं गया था, वो भूल गया था, रथ पर बैठ के उसको याद आया कि मैं बहन से नहीं मिलने आया, तो मुझे मिलने आए हैं, वो मुझे मिलने आए हैं। अर्जुन ने कहा बात ऐसी नहीं है, हमने महाभारत में बहुत परिश्रम पूर्वक तन्मयता पूर्वक युद्ध किया है, जो हमारी पीठ पे थपकी देने आए, शाबाश बेटे बहुत अच्छा युद्ध किया है। भीम बोले भैया मैंने गदा बहुत अच्छी चलाई है, जो हमारी पीठ थप थपाने आए, वाह तूने गदा बहुत अच्छा, गदा का काम तूने बहुत अच्छा किया है। निकुल सहदेव सभी के सभी अपना अपना कह रहे हैं भगवान मेरे लिए आए, भगवान मेरे लिए लौटे, भगवान मेरे लिए लौटे। ध्यान देना, चाहिए ऐसा ही चाहिए, अपनी अपनी भक्ति को पर विश्वास रखो कि भगवान मेरे लिए आए, भगवान मेरे लिए आए, एक कथा मेरे लिए हुई, एक कथा हमारे लिए की गई। क्या समझे? भाव तो बना सकते हो। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है जो व्यक्ति, सुनना चाहे, बड़ी अच्छी बातें कह रहा हूं, बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा आती है, वहां कहा जो अश्वमेध नहीं कर सकता है वो केवल अश्वमेध की भावना करे तो उसको उसका फल मिल जाता है। क्या समझे? भावना करो कथा मेरे लिए हुई, ये भागवत मेरे लिए हुई, ये स्वामी आनंद चैतन्य कथा करने मेरे लिए आई। वाह कितनी सुंदर बात। सभी ने कहा भगवान लौट आए, मेरे लिए आए, मेरे लिए आए, मेरे लिए आए। द्रौपदी बोली मेरे लिए आए। युधिष्ठिर ने कहा भाई झगड़ क्यों रहे हो, ऐसा भगवान तो सामने बैठे हैं, उनसे पूछ लो कि आप किसके लिए आए हो, सामने बैठे से पूछ लो ना। सबके मन में यदि मैं पूछूंगा, कोई भी पूछेगा तो भगवान जरूर कहेंगे, जरूर कहेंगे कि हम तेरे लिए। बुआ जी कहेंगी सोच नहीं मेरे लिए, कुंती सोच नहीं, द्रौपदी सोच नहीं मेरे लिए, सब कहते हैं कि भगवान कहेंगे हम इन्हीं के लिए आए, इन्हीं के लिए। सबके मन में ऐसा चल रहा है। युधिष्ठिर ने कहा जरा थोड़ा बताने कृपा करें आप किसके लिए आए हैं। भगवान अच्छा कहा ठीक हम बताते हैं, सावधान हो जाओ, अपना नाम सुनो, हम किसके लिए आए, सुनो ध्यान से, हम किसके लिए आए। सभी के कान खड़े चौकन्ने, निश्चित मेरा नाम दिया जाएगा, निश्चित मेरा ही नाम दिया जाएगा, किसी का नाम, मेरा नाम जरूर आएगा। सभी के मन में भगवान ने कहा मेरा बहुत प्रिय भक्त है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो मुझे कभी विस्मृत नहीं करता है और मैं उसे कभी विस्मृत नहीं करता हूं। हर स्थिति में वो मेरा चिंतन करता है, मैं उसका चिंतन करता हूं। ध्यान रखना, जब चिंतन बढ़ जाता है, जप बढ़ जाता है, भजन बढ़ जाता है, भगवान जब भजन, जो भक्त भजन करता है, जो भक्त भजन करता है, जो भक्त भगवान का चिंतन करता है, तो भगवान फिर भगत का चिंतन शुरू कर देता है। ऐसा चिंतन करो, ऐसा जप करो कि वो आपका चिंतन शुरू कर दे, सुंदर ध्यान से, भगवान आप किसके लिए आए? बोले मेरा भगत निरंतर मेरा चिंतन करता है। उसका नाम बतलाएंगे प्रभु? उसका क्या नाम है? वो कौन सा भगत है, कौन सा भक्त है? कहा बोले वो भक्त है, उसका नाम है। हाँ भगवान नाम बताएं, जल्दी नाम बोलिए, क्या उसका नाम है? भगवान बोले उसका नाम है, का नाम है सबके मन में झूठ मेरा ही। भगवान बोले उसका नाम है भीष्म पितामह। है भीष्म पितामह महाराज, वो तो पूरे युद्ध में आपको निशाना बांध बांध के तीर मारते रहे, बाण छोड़ते रहे, कोई उन्होंने मौका नहीं छोड़ा। वो भगत कैसे बन गए? वो भगत कैसे बन गए? अरे मैंने उसको वचन दिया है, हमने उसको वचन दिया है कि जब तू दुनिया से प्रस्थान करेगा तब मैं तेरे पास आऊंगा, तब मैं आऊंगा। विवेचन आ रहा है कि कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राणा प्रयाण समये कफवात पीतई और कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरांते, वो मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा मनन कर रहा है, मेरे में मस्त है, मेरे में तन्मय है, मेरे में निमग्न है। कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। भीष्म ने संकल्प किया है, हे मेरे मन, ऐ मेरे मन, तू कृष्ण भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं मत जा। कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरांते, भगवान के पद पद्म में चित्त की वृत्ति लग जाए। आप भी भीष्म पितामह के साथ साथ ध्यान देना, आप भी एक बार कह दो कि हे प्रभु मेरा भी मन आपके चरणों में सन्निहित हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान आपने वचन कब दिया था, आपने कब कहा था? बोले ऐसा हुआ, 8 दिन हो गए थे युद्ध चलते चलते, और 8वें दिन तक हुआ क्या कि हमारे पांडवों ने ऐसा पौरुष दिखाया, अगले दिन की युद्ध में आधी सेना को समाप्त कर दिया। जब आधी सेना समाप्त हो गई, शाम को दुर्योधन ने भीष्म पितामह तो सेनापति थे, सेनापति भीष्म पितामह को बुलाया और भीष्म पितामह को डांट करके दुर्योधन ने कहा आपके अधिपतित्व में, आपके सेनापतित्व में आधी सेना मार दी गई, इसके मतलब है 2-4 दिन हम खत्म हो जाएंगे, हम सब नष्ट हो जाएंगे। आपने क्या किया, आप कैसा युद्ध कर रहे हैं? आप इसके मतलब है कि आप दिल से उनकी तरफ हो और शरीर से मेरी तरफ हो, ये ठीक नहीं कर रहे। भीष्म पितामह ने तुरंत बाण खींचा तुरुणी से, अधिक दुर्योधन ये तू ऐसा कहता है तो कल के युद्ध में 1 पांडव मार दूंगा और 1 मर जाएगा तो 5 का संकल्प है, जब भी मरेंगे इकट्ठे मरेंगे, खेल खत्म हो जाएगा कल, चिंता मत कर। पांडवों ने जब ये समाचार सुना तो शोकाकुल, शोक से आकुल हो गए, और जब ये सूचना कौरवों को मिली तो उसमें खुशियां ही खुशियां। चलते चलते भीष्म ने बोला वचन तो मैंने दिया है लेकिन थोड़ी कमी है, अभी आशीर्वाद आधा मिला है, तू आया है और जब तेरी पत्नी आएगी तब पूरा बना जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की हमारा नियम है पति पत्नी दोनों पूजा में बैठे तभी पूरा मिलता है, ये चर्चा आ रही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। भगवान ने बताया, युद्ध समाप्त हुआ, सभी लोग गए, पांडवों के खेमे में उदासी छाई। भगवान तो सारथी थे, घोड़ों को खोला, चारा डाला वगैरह वगैरह सेवा करके जब अंदर गए तो देखा वहां पर देवी द्रौपदी रो रही है, कुंती भी उदास है, पांडव भी उदास हैं। बोले ये सब क्यों द्रौपदी, क्या बात है, ऐसा क्यों, क्या हो गया? बोले भगवान आप तीन लोग के नाथ हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्या हो गया, क्या आपको नहीं मालूम क्या हो गया है? भगवान ने कहा देव द्रौपदी तू मेरे को तीन लोग का नाथ भी कह रही है और अंतर्यामी भी कह रही है और रो भी रही, ये कोई तारतम्य मरा नहीं, अंतर्यामी भी कह रही है और रो भी रही है, कोई तारतम्य नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा अब तुम निश्चिंत हो जाओ, जब आपने मेरे पे छोड़ा है तो मुझे अंतर्यामी कहा है, हम पर डोर को छोड़ दिया है। अरे जिसने अपनी सौंप दी, जिसने अपनी सौंप दी प्रभु तेरे हाथों डोर, और कभी उलझती है नहीं उसकी नंद किशोर। जिसने अपनी डोरी को भगवान के हाथ छोड़ दिया कभी उलझती नहीं है, चिंता नहीं करो द्रौपदी, जाओ विश्राम करो, खाओ पियो, आराम करो। भगवान ने सबकी चिंता अपने सिर पे ले ली। भगवान बिस्तर पर तो लेटे हैं पर भगवान को चैन नहीं है। भगवान सोचे भीष्म पितामह ने वचन दिया है और भीष्म का कभी भी वचन अधूरा होता नहीं है, वो पूरा करके छोड़ते हैं। अब मैं क्या करूं, दिव्य का नाम तो देवव्रत है, क्या नाम है, देवव्रत है, और दृढ़प्रतिज्ञ होने के कारण उसका नाम भीष्म है, क्या है, क्या होगा? भगवान को नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल नहीं, पूरी रात बीत गई, सवेरे तीन बज गया, चार बजने वाला था, साढ़े तीन का समय था। भगवान के दिमाग में एक उक्ति आई, वो हो चलते चलते कहा था कि अपनी पत्नी को भेजना, द्रौपदी के पास आई, देवी थोड़ी गुंजाइश है, दरवाजा खटखटाया, द्रौपदी ने गेट खोला, कपाट हटाया, खेमा का कपाट हटाया, कहा देवी आपको अभी चलना है? द्रौपदी ने पूछा नहीं कहां चलना, बोले अभी चलना, जैसी हो वैसे ही चलना है। आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी। जब पहुंचने वाले तो भगवान ने कहा कि हम भीष्म बाबा के पास जा रहे हैं और देवी ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लंबा घूंघट करना पड़ेगा, यूं गुजरात में नहीं चलता है, यूपी में चलता है लंबा घूंघट, आप जाकर के भीष्म बाबा को प्रणाम करना और इतने में काम बन जाएगा। भगवान जाते हैं द्रौपदी को लेकर के, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, जाकर बाबा के चरणों में तू तो अपना मस्तक रख दे, जाओ। का भगवान समझा रहे तू ऐसा ऐसा करना, जाकर के अंदर जाएगी तो इस प्रकार से माथा टेकेगी। द्रौपदी ने कहा प्रभु जाऊंगी तो वहां, तब वहां तो गेट पर कितने गेटकीपर, कितने सैनिक खड़े होंगे, कैसे घुस पाऊंगी? भगवान ने कहा देवी इसकी चिंता मत कर, अरे मैं जेल में ही तो पैदा हुआ था, वहां पहरेदार कम थे क्या? हम तो पहरेदारों के बीच में जन्मे हैं, हमारा प्राकट्य जेल के बीच में हुआ, कितने पहरेदार थे, वहां सब काम हो गया था। भगवान बोले जहां चलता नहीं है काम, जहां चलता नहीं है काम, तीर और कमानों से विजय होती वहां, नटवर की बंशी की तानों से। भगवान बोले घबराओ नहीं देवी, आप पहुंचो तो सही वहां पर, आपको सम अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, चाहिए पर एक थोड़ा काम करके जाओ, ये जो चप्पल पहन रखी है पांचाल देश की है, वो पहचानी जाओगी, ये किसी के पास नहीं है, इसको दो। भगवान ने चप्पल उतरवाई द्रौपदी की, अब कहां रखूं, कहां संभालूं, सो भगवान ने सोचा से कान रखा जाए, अपने पीतांबर में ऐसा लपेटा मार दिया। चल क्या भगवान की लीला, द्रौपदी अंदर गई, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान तो बाहर खड़े रहे, अरे खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, जाकर इतवर के चरणों में तू तो अपना मस्तक रख दे। ऐसा ही किया, वहां का वातावरण देखिए। अरे प्रातकाल की बेला में भीष्म की लगी समाधि है, मन हर चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई उपाधि है। देखा एक सदवा नारी है और चरणों पे शीश झुकाती है। आशीर्वाद निकला मुख से सौभाग्यवती तू भव बेटी, वीर कुमारों वाली हो, सिंदूर से मांग न खाली हो। आशीर्वाद दिए, तेरे हाथों में मेहंदी का रंग कभी ना छूटे बेटी। बहुत आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता हूँ मैं यही बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कुछ कल कहा कुछ आज कहा, ये कैसी बातें करते हो। पांडव यदि मारे जाएंगे, सौभाग्य हमारा कहाँ रहा। अब आई होश पितामह को, माला हाथों से छूट गई, मन हर चरणों से बिलग हुआ, गहरी चिंता में डूब गए। भीष्म बाबा भजन कर रहे थे, ऐसी स्थिति देखी, द्रौपदी ने सोचा, जब द्रौपदी गई थी लंबा घूंघट निकाला था, जाके चुपके माथा टेका, चरणों में सिर रखा, भीष्म बाबा भजन में थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। दिन में युद्ध करते हैं, रात को उनका भजन करते हैं, जाप कर रहे हैं। श्यामचंद्र मन में बसे हैं, चित्त में बचे हैं। द्रौपदी ने जो जाके प्रणाम किया, जो माला से जप कर रहे थे वो जप वाला सीधा हाथ द्रौपदी के सिर पे रख दिया। और जब जप वाला हाथ कोई साधु, किसी योगी, कोई इति, कोई अमलात्मा, माता पिता, बड़ा बुजुर्ग रख देता तो कल्याण पक्का है, निश्चित कल्याण है। द्रौपदी ने सोचा, अब तो सिर पे हाथ रख दिया गया है और बहुत बातें भी बोल दी गई हैं, सिंदूर से मांगन खाली हो, तू वीर कुमारों वाली हो। जब सिंदूर नहीं मिटेगा इसका मतलब पति रहेंगे। अब मौका है। घूंघट निकाल के गई थी, अब काम बन गया है, घूंघट खुल जाए तो कोई बात नहीं, घूंघट खुल जाए तो। अरे घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खुल जाए, जब पिया परमेश्वर परमात्मा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। द्रौपदी ने सोचा, अब मौका है, क्लियर बात कर लेनी चाहिए, बात में गांठ नहीं लेनी चाहिए। आपने कल तो कहा था कि एक बाण से एक को मारूंगा, संकल्प है पांचों मर जाएंगे, तो कुछ कल कहा कुछ आज कहा, एक कैसी बात है, कल वाली बात। बोले बेटी तू कौन है, सच सच बतला दे है बेटी, किस तरह से आई तू बेटी, है कौन तुझे लाने वाला। हे बेटी सच बता, तू कौन है, कहां से आई है, तू यहां तक पहुंचाया किसने, तेरे में ताकत नहीं यहां पहुंचने की, वीर योद्धा है, भट है, सैनिक लगे हुए हैं, तू यहां कैसे पहुंच सकती, तेरे में क्षमता नहीं पहुंचने की, तुझे कौन लाने वाला है। द्रौपदी बोले पहले मेरी बात क्लियर करो, हमारी बात साफ करो, आपने जो कहा था ना कल कि एक एक मार दूंगा वो बात पहले पूरी करो, उसको मुझे बताओ। भीष्म बाबा बोले देवी मैंने तेरे को वचन दे दिया, तेरे को वचन दे दिया तो बस दे दिया। तो बोले कल वाला। भीष्म बाबा बोले कल जो मैंने बोला था वो मैंने नहीं बोला था, है? नहीं बोला था आपने बोला? बोले मैंने नहीं बोला था। किसने बोला था? बोले क्रोध ने बोला था, गुस्सा ने बोला था। मां चक्कू लेकर के दौड़ती है बेटे के पीछे, तेरा पेट फाड़ दूंगी, तुझे ऐसा कर दूंगी। कितना कितना मां बेटे को बोलती है, और मां से जब पूछे तो मां कहती है मैंने कोई दिल से थोड़ी बोला था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था ऊपर ऊपर से। भीष्म बाबा बोले अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, हम नहीं बोले, वो क्रोध बोला था, हमारा आवेश बोला था, हमारी गुस्सा बोली थी, वो मेरी गुस्सा आवेश क्रोध बोला था। मैं सच कहता हूं द्रौपदी मैंने नहीं बोला था। तो अभी जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? साफ करो ना बात को, साफ करो, अभी जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? भीष्म बाबा बोले वो मैं बोल रहा हूं। आप कैसे बोले? मेरे चित्त में श्याम सुंदर विराजमान है, द्वारकाधीश बैठे हुए हैं, मैं माला से जप कर रहा हूं, इस समय हमारे द्वारकाधीश हमारे हृदय में बैठ करके हमसे बुलवा रहे हैं, हमसे बुलवा रहे हैं, तो ये मेरा क्रोध नहीं बोल रहा है, ध्यान देना। पूजा में बैठे बैठे जो वाक्य निकलता है, जप करते करते जो आशीर्वाद निकलता है, ध्यान करते करते, चिंतन करते करते, जप करते करते, यदि आप कोई वाक्य बोल दो, कोई आशीर्वाद दो, वो कभी निष्फल नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। भीष्म पितामह बोले बेटी अब बता, सच सच बतला दे हे बेटी, है कौन तुझे लाने वाला, किस तरह से आई तू बेटी, कैसे पहुंची, कौन लाया? द्रौपदी ने सोचा अब मेरा तो काम बन गया है, हमारा तो काम बन गया है, और इस बूढ़े बाबा वही काम बना दो बड़ी अच्छी बात रहेगी, इसको भी दर्शन दिला दो, इसने बहुत माला फेरी, जप किया, भजन किया, हमारा तो काम बन गया है, अब इसका भी काम बना दो, इसका भी काम बना दो। द्रौपदी बोली हे बाबा, हमको लाने वाले, यहां तक पहुंचाने वाले वो कृष्ण कन्हैया ही हैं, वो आपके इष्ट देव ही हैं, जिनका आप भजन करते हैं। बोले कहाँ हैं? बोले आपकी ड्यूटी पे खड़े हैं। सो भीष्म पितामह दौड़ करके आए, भाग करके आए, जब दौड़ करके आए और जब आते आते देखा तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि भीष्म पितामह आ रहे हैं। सो कृष्ण की दृष्टि दुपट्टे पे गई कि चप्पलें तो नहीं दिख रही, संभालो इनको, अरे अरे मैं देख लिया है तू क्या नहीं करता भक्तों के लिए, तू सब कुछ करता, तू चप्पलें भी ढोता उसके लिए, अपने भक्तों के तू चप्पलें भी लेके दौड़ देता है, अरे ऐसा कौन सा काम है वो तू नहीं करता है। भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि भगवान क्या नहीं करता है, भगवान सब कुछ करता है, भगवान सब कुछ करता है। भगवान और भीष्म आमने सामने खड़े हुए, हे श्याम सुंदर हमने जो वचन दिया था कौरवों को मेरा तो टूट गया है, अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, तुमने भी कोई वचन लिया है, तुमने भी कोई वचन लिया है कि हम इस युद्ध में अस्त्र नहीं छुड़ाएंगे, उठाएंगे, अब लड़ाई उनकी अलग, अब हम आपकी शुरू हो गई, हम आपकी अगले दिन युद्ध होता है, ध्यान देना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। प्रातः काल दूसरे दिन जब अगले दिन युद्ध हुआ, उस युद्ध में घड़ी तो भाग गई, ग्रीस जी हैं कब है ना, कुछ नहीं बहुत कुछ कहना, मैंने भी हम तो एक मिनट अटक गए, एक कोई पकड़ के रह गई, हमारी ऐसी कथा होती मैं क्या करूं, बह गए तो बह गई, बह गए तो बह गई, चले गई, भाव बन गया तो बह गए तो निकल गए बहुत दूर, चलो रोकता हूं अपने को। भगवान श्याम सुंदर से भीष्म बोले, अरे पचबधू बचन दियो मैंने दुर्योधन को और तुमने प्रण कीनो, मैं अस्त्र ना उठाए हूँ। पचबधू बचन दियो और मैंने दुर्योधन को और तुमने प्रण कीनो, मैं अस्त्र ना उठाए हूँ। तो शरण पड़ी आए के पंचाली पहचान बिन और दीनो बरदानताए सफल बनाए हो। छलिया छलिया तुमने प्रण मेरो छल से छुड़ाए हो, तो प्रात ही तुम्हारो प्रण मैं भी छुड़ाए हूँ। भीष्म बाबा ने कहा कि आपका भी प्रण जो है हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो कल प्रातः काल में आपका भी एक नियम है हम उसको भी तोड़ेंगे, हमारा तो प्रण टूट गया है। अगले दिन के युद्ध में इस प्रकार से उनका नियम टूट गया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जब ऐसा हुआ ध्यान देना, उसी बीच में मौका पाया, मौका देखा, संकेत किया, रथ पर बैठे हुए हैं, ध्यान देना, रथ पर बैठे हुए हैं। अब उधर से बाणों की वर्षा हो रही है, भीष्म ने देख लिया, समझ गए कि तो पूर्व जन्म का शिखंडी है, अब हम अस्त्र नहीं चला रहे हैं। अब इधर से बाणों की वर्षा होती है, भीष्म को बेद दिया बाणों से, सैया पे लेट गए हैं, अर्जुन से कहा कि शिराना दीजिए। दुर्योधन भी खड़ा था, दौड़ के भाग के मसंद उठा के लाया, वो लो चराना, सिर ऊंचा करो। अरे बोले, वीरों का चराना नहीं है, ये भोगियों का चराना है, तो वीरों का चराना ला, हमको वीरों का चराना चाहिए। अर्जुन वहीं खड़े थे, तूने से बाण निकाले दो और चढ़ाए, प्रत्यंचा को खींचा और धड़ाम से दो बाण मारे, उनका सिर ऊंचा। ध्यान देना, भगवान कृष्ण बोले, कथा भूलना नहीं, सब पूछ रहे थे आप किसके लिए आए, ये तो बात थी ना, आप किसके ही लौटे, आप तो द्वारिका जा रहे थे, क्यों किस लिए किसके ही लौटे। अरे बोले, मेरे भीष्म बाबा सैया पे लेटे हैं, हम तो उनके लिए आए हैं, उन्हीं को मिलने चलना, आप सब लोग मेरे साथ चलो। भगवान पांचों पांडवों को लेके, द्रौपदी कुंती आदि सभी को लेके गए। भीष्म बाबा बड़े अच्छे धर्मनिष्ठ हैं, बड़े अच्छे कर्मनिष्ठ हैं, बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, धर्म का उपदेश बड़ा सुंदर दिया गया, बहुत अच्छा धर्म का उपदेश आ रहा है, कहूं कि ना कहूं गिरीश भाई, फिर वो 7:30 होने वाला, अभी लंबी कथाएं कहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, मेरे दिमाग में भी मैंने क्या क्या कहना है, चलो थोड़ा संक्षेप करता हूं, बहुत संक्षिप्त प्रश्न स्पर्श करता हूं, समय को देखते हुए, घड़ी खुशी को देखते हुए। सभी के सभी पहुंच गए हैं, पांचों पांडव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है, बड़ा सुंदर भीष्म ने भीष्म से निवेदन किया, भगवान ये आपके अपने आए हैं, इन्हें धर्म के बारे में जितना आपको बोध है इनको नहीं बोध है, कर्म का बोध जितना आपको इनको बोध नहीं है, नीति का बोध जो आपको वो इनको नहीं है, आप नीति का, धर्म का, परिवार का, सभी ज्ञान इन्हें देने की कृपा करें। जब वहां कर्तव्य की चर्चा की, ध्यान देना, किसका क्या कर्तव्य है, किसको कैसे रहना चाहिए, किसके सामने क्या नहीं बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, जब इसकी विवेचना भीष्म पितामह ने की तो द्रौपदी मुस्का पड़ी, हंसने लगी, बेटी तुम कैसे हंसी, क्यों मुस्कुराई, भगवान जब मेरी साड़ी खींच रही थी तो आप जो बता रहे वैतमा हो रहा था, तो आप क्यों नहीं बोले थे, आपने क्यों नहीं रोका था, वो साड़ी खींच रही थी ना, आपको रोकना चाहिए था ना, वो आप ही तो थे, पर रोका आपने क्यों नहीं था। भीष्म बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, देवी बेटी सत्य तेरे को बतलाऊं, हम दुर्योधन के पास रहते थे, दुर्योधन का अन्न खाया, दुर्योधन का पानी पिया, दुर्योधन की हर वस्तु का प्रयोग किया, और प्रयोग के करने से मेरी जो बुद्धि थी वो मलिन हो गई थी, उसका विवेक शून्य हो गया था, इसलिए जो मुझे वहां करना चाहिए था मैं वहां कर नहीं पाया। ध्यान देना, आ जाओ थोड़ा उपनिषद में, इधर जाने का समय नहीं मिल रहा है, पर थोड़ा तजुर्बा करूंगा। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुव स्मृति। यदि आहार बिगड़ जाएगा, ध्यान देना, आहार बिगड़ जाएगा तो सत्य शुद्धि, सत्य माने अंतःकरण, हमारा अंतःकरण विकृत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और अंतःकरण दूषित हो गया तो हमारा सब कुछ दूषित हो जाएगा। बुराई कभी अकेली नहीं आती है, बुराई के पीछे लंबी लंबा तांता लगा होता है। तो गीता को देखें, संगा संजायते कामा और कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कितनी लंबी श्रृंखला है, एक बुराई के पीछे दूसरी बुराई, दूसरे के पीछे तीसरी बुराई, बुराइयों का लंबा ताता। अन्न बिगड़ गया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, वाणी बिगड़ गई तो बहुत बिगड़ जाएगा, संग बिगड़ गया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। व्यवहार की बात, नीति की बात, धर्म की बात, अनेक प्रकार की यहां पर चर्चाएं हुई हैं। समय अभाव में हम उन सब को नहीं कह पा रहे हैं। आइए, भगवान श्याम सुंदर समक्ष खड़े हैं, उनके साक्षित्व में भीष्म पितामह ने सभी को उपदेश दिया, धर्म का, नीति का, शुभ उपदेश देने के बाद भगवान से एक प्रार्थना की, हे प्रभु दीन बंदातार करुणा वरणालय, मुझे थोड़ी आप एक बात बतलाएंगे, मैंने जीवन में कभी भी स्वप्न में भी नहीं अशुभ कर्म किया, किसी को दुख दिया, पर ये हमको ये फल बाणों की सैया, ये बाणों की सैया क्यों, ये किस लिए मिली? भगवान ने विवेचना की, भीषम तुमको मालूम कर्म का फल कैसे होता है? बोले कर्ता, कारयिता, अनुमोदक, ये तीनों पाप के भागी होते हैं। कर्ता जो करवाने वाला, स्वयं कर रहा है, कर्ता मार रहा है, काट रहा है, गाली दे रहा है, पीट रहा है, कर्ता। कारयिता स्वयं नहीं मारा तो बोलता थप्पड़ मार दे, कारयिता। तीसरा अनुमोदक, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ये पीटना ही चाहिए था, इसे गाली मिलनी ही चाहिए थी, इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। ये तीनों पाप के भागी होते हैं, कर्ता, कारयिता, अनुमोदक, तीनों ही भागी होते हैं। तो बोले मैंने कब किया, क्या किया? बोले ए आप याद करो, आपने कब किया और क्या किया। सवाल लगी थी, साड़ी खींच रही थी, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, अरे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ओ साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, वो समझ में नहीं आ रहा है। उस समय पर रुका आपने, मौनम स्वीकार लक्षणम, आपका अनुमोदन था। भीष्म बोले इसका इतना बड़ा दंड, ये बाणों की सैया, रोम रोम विदा पड़ा है, इसका इतना बड़ा परिणाम, इतना भारी। भगवान बोले ये अभी का नहीं है, ये कब का है, ये कब का है? बोले बहुत पुराना है। बोले हमें सात जन्म के आदमी ने कोई सा कर्म किया ही नहीं है। आप बोलते पुराण, मुझे सात जन्म का स्मरण है, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, सात जन्म तक मुझे ये जिसका परिणाम भोगने पड़े, आप कब की बात कह रहे हैं? बोले सात जन्म से आगे जाइए, आठवें जन्म में आप चक्रवर्ती सम्राट थे, युवा थे, शिकार खेलने गए थे, वापस लौट रहे थे, रास्ते में एक दुमुही सांप की तरह होती ही चलती है, वो आपने देखी, तुनी से बाण निकाला, उसको बेधा, धनुष पे चढ़ाया, प्रत्यंचा को खींचा, आकाश में मारा, और बेचारी जब वो गिरी तो एक कीकर का पेड़ था, उसने आके झमास गिरी, उसके अंग प्रत्यंग में, सभी अंगों में उसके वो कांटे चुभ गए। जितने अवधि तक वो तड़पी कांटों की शैया के ऊपर, वो उतनी अवधि आज पूर्ण हो रही है, आज पूर्ण हो रही है, हम भी आगे इसीलिए। भगवान वो उस जन्म का याद दिलाया, अवश्यमेव भोक्तव्यम्, अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतम् कर्म शुभाशुभम्, न भुङ्क्ते क्षीयते कर्म अकल्पकोटिशतैरपि। सैकड़ों कल्प बीत जाएं पर एक कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, ध्यान देना। जैसे भैंस जाती है, भैंस की पूंछ साथ साथ रहती है। भैंस की पूंछ कहीं हो, भैंस कहीं हो सकता है। आप चलते हैं, आप कहीं हो, आपकी छाया कहीं हो सकता है। आप चलते, आपकी छाया आपके साथ साथ रहती है। भगवान ने उपदेश दिया, हे भीष्म पितामह, जैसे छाया साथ नहीं छोड़ती है, पूंछ साथ नहीं छोड़ती है, ऐसे आदमी का किया गया कर्म भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। सावधानी से रहो, सतर्क रहो, कोई त्रुटि न हो जाए, कोई भूल न हो जाए। फूक फूक के कदम रखो, हाथी फूक फूक के चलता है, फूक फूक के आगे कदम बढ़ाता है। हम भूल करते हैं, हम त्रुटि करते हैं, हम गलती करते हैं, हम सजग नहीं है, हम सावधान नहीं है। हमारी सजगता न होने का परिणाम है दुखों का मिलना, नरक में जाना, तमाम अनेक प्रकार के झंझावातों में फंस जाना, ये मेरी भूल का परिणाम है। सुनो ध्यान से, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। इस प्रकार से भीष्म पितामह को बोध कराया कि आपसे कहीं भूल हुई है, उसका फल यह है, भगवान तो अब भी पापी हूं, अब भी पापी हैं हम। तो ये सुना है कि सन्मुख हो ये जीव मोए जबहीं, अरे सन्मुख हो ये जीव मोए जबहीं, और जन्म कोटि अघनाशें तबहीं। जब मेरे जीव सन्मुख हो जाता है तो कोटि कोटि जन्मों का पाप दूर हो जाता। अब भी पापी रहा? बोले बिल्कुल नहीं, अब विशुद्ध हो गए हो, परम पावन हो गए हो, अब आप में कोई पाप नहीं है, आप शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध हो गए हो। उसी क्षण भीष्म पितामह के अंदर से वो परम तत्व निकला और वो ज्योति निकली, भगवान कृष्ण में समाहित हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। भैया इस प्रकार से मैंने प्रयास पूर्वक स्वल्प में संकोच करते हुए, कहीं विस्तार करते हुए आपको भीष्म चरित्र सुनाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। 5-7 मिनट का
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठी प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले उसी वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, उसी वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, दर्शन मुझे दिखाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सा मेरा निकट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो होठों पे कुछ हसी हो जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 जय हो राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे राधे
जय जय श्री राधे। बड़े प्रेम से उत्तर आया हतो गर्भ उत्तर आया हतो गर्भ ईशाना जीवित पुनः तस्य जन्म गता बुद्धे कर्माणि च महात्मना। अति संक्षेप उत्तर आया हतो गर्भ उत्तरा के उदर में परीक्षित महाराज जी थे उनको इस प्रकार से मार दिया गया। भगवान की कृपा से उसे पुनः जीवित कर दिया गया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था परमात्मा सब कुछ कर सकता है। उधर में है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गर्भ पूर्ण हुआ आज परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित भगवान की परीक्षित जी महाराज की हर हर महादेव। जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ ध्यान देना रो रो रुएती गते ज्ञाने रो रुएती गते ज्ञाने विपरीताम गतिम तत। परीक्षित महाराज जन्म लेते ही रोए ध्यान देना। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो रोए। पहली बात बताऊं इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा। परीक्षित नाम इनका नाम विष्णु रात है ध्यान देना। इनका नाम विष्णु रात है परीक्षित नाम से ये प्रचलित क्यों हुए। बोले परिता इच्छिता इति परीक्षिता परिता अभया निक्षा ये हमारे उपसर्ग है ना। परिता भगवान कृष्ण ऐसे देखा यूं देखा जन्म लेते ही चारों तरफ देखा ब्राह्मणों ने बोला इसका नाम परीक्षित है। क्या है परिता इच्छित इच्छित किया चारों तरफ देखा इसका नाम परीक्षित है। परीक्षित महाराज जन्मते ही रोए। यहां लिखा है रो रोएती गते ज्ञाने क्यों रोए। बोले गते ज्ञाने जो उधर में ज्ञान था और जन्मते ही वो ज्ञान खत्म हो गया। अरे गिरे तो भूमि गोस्वामी जी के शब्दों में अरे गिरे तो भूमि भाढ़ावर पानी ओ जग जीव माया लिपटानी। गोस्वामी जी बोलते हैं जैसे बूंद आकाश से स्वच्छ आती है जमीन पे पड़ते ही गंदी हो जाती है ऐसे ही जीव उधर्म होता है संपूर्ण से ज्ञान होता है लेकिन जो बाहर जमीन पे गिरता है तो वो भी माया से शमलित हो जाता है माया से युक्त हो जाता है। जमीन पे गिरते ही परीक्षित महाराज रोए बच्चा रोता है ना, माताएं बोलती जो बच्चा डर रोए तो उसको ऐसी चुट्टी मारो, रुलाओ उसको, वो बहुत जरूरी है। माताएं बोलती रोना, रोना बच्चे का रोना बहुत जरूरी है, बच्चे को रुलाओ। ये क्यों रुलाते हैं? परीक्षित महाराज रोए, बच्चा कैसे रोता आप लोगों को बहुत ज्ञान होगा। जन्मने वाला बच्चा रोता है, कैसे रोता है? वो बच्चा बोलता है, कैसे रोता है? वो बच्चा बोलता है कुहां, क्या बोलता है? कुहां 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 करके बच्चा रोता है। ये मालूम कुहां का मतलब क्या हुआ? अरे भाई संस्कृत में कहते हैं कुत्र, क्या बोलते हैं? संस्कृत बोलते हैं कुत्र, हिंदी बोलते हैं कहां, क्या बोलते हैं? कहां। परिचित आए, उसने बोला एक कहां 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 कहां, ओ भगवान कहां, ओ भगवान कहां, जो उधर में जिसका दर्शन करते थे वो कहां, वो कहां, वो कहां, माने गोद में लिया बेटे, यहां 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 सब काम खराब कर दिया, सब काम खराब कर दिया बेटा, यहां 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 काम खराब। ध्यान देना, दुनिया से परिचय करना शुरू कर दिया, ये तेरे डैडी तेरे अंकल वगैरह वगैरह ऐसा बोलना शुरू कर दिया। परीक्षित महाराज रोए, परीक्षित महाराज आप भी रोए नहीं रोए? राजेश भाई हम भी तो रोए, दुनिया में जो आता है वो रोता है। राजेश भाई सभी रोते हैं, अरे रोते आए रोते रहते, रोते आए रोते रहते, और रोते ही चल देते हैं, रोते ही चल देते हैं, और देते कष्ट मात पिता को, व्यर्थ जन्म को लेते हैं। रोते आए और रोते रहते, दूध नहीं पिलाया तो रोए, स्कूल गए काम नहीं हुआ तो रोए, फेल हो गए तो रोए, पास हो गए तो रोए, होगी नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हुई तो रोए, और हो गई तो रोए, बड़ी समस्या, बड़ी समस्या, शादी हो गई तो और रोए, है ठीक नहीं मिली, ऐसी मिली वैसी मिली, बच्चे हो गए तो रोए, और बच्चे नहीं हुए तो रोए। कब हंसे? कभी हंसे? हम पंजाब की कथा कह रहे थे, एक व्यक्ति पीछे से खड़ा होकर के बोला, महाराज हाँ मैं हंसा हूं एक बार। मैं कब हंसा? जिस दिन घोड़ी पे बैठा था। मैं कहता तो झूठ बोलता है, उसने तेरा रोना पक्का शुरू हो गया था, स्टाम्प शायद पक्का उसने तेरा रोना शुरू हुआ था, जिस दिन घोड़ी पे बैठ लिया। अब जिंदगी भर रो, जिंदगी भर रो। बड़ा खुश होता है ससुराल जाके, ससुराल जाता बहुत खुश होता है। मैंने पूछा, भाई क्यों इतना खुश होता ससुराल जाकर के? बोले, महाराज साली जीजा बोलती है। साली क्या बोलती है? जीजा। अरे मैं कह, तू जानता जीजा माने होता क्या है? बोले, समझ जीजा माने होता क्या है। अरे साली और साला तेरे को गाली दे रहा है। वो क्या गाली दे रहा महाराज? मैंने कहा, साली बोलती है, साला बोलता है, तुझे मैंने अपनी बहन दी है, अब तू जीजा कैसे जीता है? मुझे जी के दिखा तू, अब कैसे जिंदा रहता है? अब तो जिंदा रह के देखा तू कैसे जीता है। बहन दिए काल, दिए काल, रोज तुझे थोड़ा थोड़ा मारेगी, रोज तेरे को मारेगी, जी के देखा कैसे जीता है। जानता है जीजा माने क्या होता है? जीजा माने होता है जी के देखा कैसे जीता है, और तू जीजा से खुश होता है, क्या बात, जीजा कह दिया। सच्चिदानंद भगवान की, रोते रहते हैं, रोते आए रोते रहते, रोते ही चल देते हैं, और देते कष्ट मात पिता को, वृद्ध जन्म को लेते हैं। रो भगवान की, रो, ध्यान देना, भगवान को रो, जिसने जन्म दिया है, सुंदर जीवन दिया है, उसके लिए रो, दुनिया के लिए क्या रोना है। संस्कार संसार के लिए क्या रोना है? संस्कार को जिस दिन संसार के रोना बंद कर दोगे, प्रभु को रोना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ध्रुव रोए, मीरा रोई, प्रहलाद रोए, सूर रोए, तुलसी रोए, कबीर रोए, कौन नहीं रोया? जन्मने में तो सब रोए रोए हैं, लेकिन ये भगवान के लिए रोए। जो भगवान को रोता है उसे फिर कभी जिंदगी में अथवा जन्मांतर में कभी रोने नहीं पड़ता है, कभी रोने नहीं पड़ता है। परिचित रोए, भगवान के लिए रो। किस लिए रो? भगवान के लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। कथा हमारी छूटेगी, हम जहां पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। ताकत लगा रहा हूं, जितने मिनट बाकी बचे हैं उतने में ही सुनो ध्यान से। एक्सप्रेस, हमें सब ढंग की कथा कहना आता है। हमारे महाराज जी बोला करते थे, पूर्णानंद जी महाराज यहां खूब आते थे। बच्चू भाई जी से बहुत प्यार था, बहुत प्यार। बच्चू भाई तो इंसान नहीं थे, एक देवता थे, सच आपसे कहूं, कहीं नहीं क्या, बहुत भले आदमी थे। हम उनके कार्यकाल में दो बार कथा करके गए हैं, उनके समय पे दो बार मैंने कथा की उनके रहते समय। संयोग अब देखो बना, फिर आए 15-16 वर्ष साल के बाद। ये ईश्वर की लीला है। सुनो ध्यान से, सच्चिदानंद भगवान की। वो मेरे महाराज जी कहा करते थे पूर्णानंद जी, अरे भाई कथा प्रवचन तो रबड़ का गुब्बारा है, जितना चाहो फुला दो और जितना चाहो छोटा कर लो। हर प्रकार की कथा करना आता है। सुनो ध्यान से, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, प्रौढ़ हुए, इरावती के साथ शादी हुई, जन्मेजय आज पुत्र हुए, राजगद्दी मिली, गद्दी पे बैठाया गया। गद्दी पर बैठने के बाद में भ्रमण करने निकले, रथ पर बैठे, तूणीर वर्ण को लेकर के, सेना को लेकर के। कलयुग मिलता है और कलयुग जब मिला है तो मुलाकात हुई है। कलयुग को देखा कि एक गाय और एक बैल, तीन पैर कटे हुए एक पे खड़ा है बैल, धर्म बैल है, पृथ्वी माता गाय बनकर के आई है, भूखी है, प्यासी है। धर्म ने उस बैल ने पूछा, क्या बात है, आप रुदन क्यों कर रही हैं? संक्षेप में बताया कि कली आ गया है, वही अभी मेरे लाश से मेरे को मार रहा था। परीक्षित ने मारा उसको, फटकारा, डांटा, निकल जाए यहां से। उसने कहा कि हमें कोई जगह तो दो आप। तो उसको शराब खाना, वैश्यालय, कसाई बाड़ा, वैश्यालय, चार जगह दी। कली को बोला हमें कोई और जगह दो। बोले क्या चाहिए? बोले चार आपने दी, एक हम मांग लें। बोले मांग ले। बोले सोना दे दो। ठीक है, सोना दे दिया। सोने में बास कलयुग का, सोने में रहने लगा। राजा आई, वापस लौट रहे थे, महर्षि शमीक बैठे हुए थे तपस्या में, बहुत प्यास लगी थी, मरा हुआ सांप लिया उनके गले में डाल दिया। शृंगी को पता लगा हमारे पिता के गले में सांप डाला है, उसने वहीं से नदी से जल लिया और शाप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मृतक सांप डाला है मैं शाप देता हूं, आज के शाप, आज के सप्तम दिन वही काला नाग बनेगा, तक्षक बनकर आएगा, उसे डसेगा और वो मर जाएगा। परीक्षा ली, क्या किया? परीक्षा ली किसकी? संत की। बड़ा अच्छा विषय विवेचनीय था, पर समयाभाव। संत की परीक्षा कभी नहीं लो, गुरु की परीक्षा कभी नहीं लो, भगवान की परीक्षा कभी नहीं लो। ध्यान देना, द्वारिका में परीक्षा शाम आद ने ली थी, क्या परिणाम हुआ? द्वारिका का नाश हुआ। ध्यान देना, द्वारिका का नाश हुआ। सती ने परीक्षा राम की ली, परिणाम अच्छा नहीं निकला। ब्रह्मा ने परीक्षा कृष्ण की ली, परिणाम अच्छा नहीं निकला। और राजा परीक्षित ने परीक्षा ली ऋषि की, परिणाम अच्छा नहीं निकला, शाप निकला। किसी भी संत की कभी परीक्षा मत लो, भगवंत की परीक्षा मत लो। ये श्रद्धा के विषय हैं, परीक्षा के विषय नहीं है। वापस लौटे, घर आए, मुकुट उतारा, उसे मुकुट की करामात थी, शनि में बैठा हुआ था, जरासंध का मुकुट था, दुर्गुण उसमें आगे थे। स्थान वस्तु व्यक्ति इन सभी में गुण और अवगुण होते हैं, वस्तु स्थान ये सभी गुण अवगुण वाले होते हैं, सभी में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। मत समझो कि व्यक्ति ही बुरा होता है, स्थान विकृति होती है, वस्तु विकृति होती है, वस्तु अच्छी बुरी होती है। व्यक्ति को ध्यान देके चलना है। कृष्ण कन्हैया लाल की ध्यान देना। मुकुट उतार के रखा, इतने में होश आया, आ भूल हो गई, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। ऋषि का भेजा हुआ गौरमुख ब्रह्मचारी आया, आपको पुत्र ने शाप दिया है, ऋषि के पुत्र ने, सातवें दिन तक छकाएगा, आपको खाएगा, आप तैयारी कर लो जाने की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सातवें दिन तक्षक आएगा, आपको डसेगा, आप तैयारी कर लो। सातवें दिन आएगा, कब आएगा जी? है जी, बोलते क्यों नहीं, कब आएगा? सातवें दिन आएगा और डसेगा। किसको? परिचित क्यों? उसको तो डसेगा, डसे कोई आठवां दिन नहीं बना जो मुझे आके डसे। वो काल ही तो तक्षक है, वो कालरूपी तक्षक आएगा, आठवां दिन कोई बना नहीं है, हम भी उसी के अंदर हैं, हमारा भी नंबर आने वाला है। सातवें, सात दिन में कोई दिन हमारा भी, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परिचित को वैराग्य हुआ यह सुन करके, घर बार परिवार को छोड़ करके गंगा के तट पे गए हैं, शुक्रताल में पहुंचे, वहीं पर आसन जमाया। योगी इति अमलात्मा महात्मा ऋषियों ने सुना, सब वहां पर आ गए। उसी मध्य में योगिंद मुनिंद अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, सुखदेव जी महाराज ने उपदेश दिया, नमन किया, वहां पर प्रश्न किए, ध्यान देना, प्रश्न किए। एक बात आपको बतला दूं, जिस जीवन में प्रश्न नहीं है वह जीवन नहीं है। प्रश्न बहुत जरूरी है, प्रश्न प्रगति का, उन्नति का प्रतीक है। यदि प्रश्न है तो आपकी प्रगति है, आपका उत्थान है, आप श्रेष्ठ बनेंगे। और प्रश्न नहीं है, फर्ज कीजिए हम कथा सुना रहे हैं, परीक्षित ने प्रश्न किए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत है, हम कथा सुन रहे हैं और कोई प्रश्न नहीं यदि उठ रहा है तो या तो मैं समझ नहीं रहा हूं या मैं पूरा समझा हुआ हूं, दो ही अर्थ निकलते हैं। दो ही अर्थ निकलते हैं, या तो हम सब कुछ समझे हुए हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए प्रश्न दो अवस्थाओं में नहीं उठते हैं, या तो आप परिपूर्ण हैं तो प्रश्न नहीं उठेगा, अथवा हमारी बुद्धि में कुछ घुस नहीं रहा है, दो अवस्थाएं होती हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज से बोले, अथा प्रक्षामि संसिद्धिम्, अथ प्रक्षामि संसिद्धिम् योगिना परमं गुरु पुरुषस्य एत कीर्ति इत कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। ध्यान देना, सच्चिदानंद भगवान की, सती के जीवन में प्रश्न आया, उमा के जीवन में प्रश्न आया, ध्यान देना ये जो बात कह रहा हूं, राम के जीवन में प्रश्न आया, कहां प्रश्न नहीं आया? जिनके जीवन में प्रश्न आया, जनक के जीवन में प्रश्न आया, परीक्षित के जीवन में प्रश्न आया, अर्जुन के जीवन में प्रश्न आया, अर्जुन का प्रश्न गीता बनी, जनक का प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र गीता बनी, राम का प्रश्न योग वशिष्ठ बना उत्तर के रूप में, और परीक्षित के प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में श्रीमद् भागवत बनी। आप भी प्रश्न करो, प्रश्न उठना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया, अथ प्रक्षामि संसिद्धिम् योगिना परमं गुरु पुरुषस्य एत कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य। आगे और प्रश्न करते हैं, इच्छोतव्यम् अथो जाव्यम् यथ कर्तव्यम् निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा गुरु यद्वा विपर्यम्। क्या भजन करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या अपना कर्तव्य होता है, किस प्रकार से म्रियमाण अभी अभी मरने वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, क्या तप करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, उसकी बुद्धि कैसी बननी चाहिए, क्या किस ढंग का संपूर्ण विशद व्याख्यान प्रश्नों के रूप में परीक्षित जी ने सुखदेव जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। और उन समस्त प्रश्नों का माया क्या है, अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है, इन सभी विशद चर्चाओं को यहाँ परीक्षित ने प्रश्न के रूप में रखा है, तो प्रश्न किया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। मेरी घड़ी में इस समय ठीक 7:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? मेरी घड़ी में। हम अपनी घड़ी से आप पहुंचते हैं, पहुंचे हैं तो 7:30 हो रहे हैं। यहीं पर वाणी को विराम, शेष चर्चा कल। आप लोगों से निवेदन है 80 संख्या में आप आए और कथा को सुने। अब आरती बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ी गई डोरी किशोरी तेरे चरणों में, जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में मेरी लाड़ो तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में मेरी लाड़ो तेरे चरणों में, जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में।
जिसने सारी दुनिया का
हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो
हरे चरणों के मैं तू दर्शन पाके बिहारी ले लो मेरी घनश्याम ले लो मेरी घनश्याम आप आए नहीं और खबर भी न ली
आप आए नहीं और खबर भी न ली
आप आए नहीं और खबर भी खत लिख लिख के भेजे तमाम ले लो मेरी घनश्याम
जैसी
महाराज की जय जय श्री राम।